ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम, जैसे हमने कल चर्चा किया, उसमें श्री यमुना जी और श्री गोवर्धन भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो संक्षेप में, आप लोगों ने यमुना जी का दर्शन किया, स्नान किया? सावन के महीने में बहुत घनघोर वर्षा होती है, तब दिल्ली में जो डैम बना हुआ है वो ओवरफ्लो होता है। साल भर में यमुना जी का जल यहाँ पर यमुना जी में नहीं आता है, लेकिन सावन भादव में यमुना जी का जल दिल्ली से एज इट इज वृंदावन में आता है। तो हो सके तो स्नान कर लेना सवेरे के समय, 6 बजे, 6:30 बजे या 7 बजे, 7:30 बजे तक बहुत सुंदर वातावरण होता है, क्योंकि यमुना जी का जो किनारा है वो भगवान के वरदान की वजह से सब पवित्र धाम बन गया है। श्री यमुना जी गोलोक वृंदावन से आती हैं। जब भगवान यहाँ पर अवतार लेने का निर्णय लेते हैं, तो जब उनको भेजते हैं तो यमुना जी को आदेश आता है कि आपको जाना है। तो ऐसा लिखा है कि 1 लाख पहिए वाले रथ पर बैठकर लाखों सखियों के साथ पूर्ण श्रृंगार करके यमुना जी गोलोक से निकलती हैं। उनके रथ में अनंत घंटाएं लगाई गई हैं, अनंत रत्न लगाए गए हैं, और 1 लाख पहिए वाला रथ कितना विशाल होगा। ऐसे विशाल रथ से वो गोलोक से निकलती है, फिर विरजा नदी को पार करते हुए भौतिक दुनिया में प्रवेश करती है, फिर वहाँ से ब्रह्मा लोक में प्रवेश करती है, सारे स्वर्ग लोगों को पार करते हुए फिर पृथ्वी पर आती है, और वो यमुनोत्री इस जगह से पृथ्वी पर प्रकट होती है। तो जितना अंतर वो यमुनोत्री से पार करती है वृंदावन धाम तक पहुंचने के लिए, उसके सारे किनारे तीर्थ हैं, लेकिन जब वो वृंदावन में प्रवेश करती है तो श्री वृंदावन अगर नेत्र है तो यमुना जी काजल है। पूरे वृंदावन को, पूरे परिघ को, है ना, सर्कमफरेंस को पूरे घेरते हुए पूरा परिक्रमा करती है वृंदावन का, और फिर आगे चले जाती है। और उसका रंग भी गहरा है, इसलिए यमुना जी को वृंदावन के काजल की उपमा दी गई है। और एक आवाज़ कहाँ से आ रहा है, कल तो नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है, डोंट गेट इट्स ऑल राइट। तो यमुना जी जब तक वृंदावन के बाहर है तब तक उसमें वो शक्ति है कि वो सारे पापों को नष्ट कर देती है। जैसे वृंदावन में प्रवेश करती है तो उसके अंदर और 2 अद्भुत शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, वो पाप के साथ में पुण्य भी नष्ट कर देती है, और पाप और पुण्य को दोनों को नष्ट करते हुए हमें प्रेम और भक्ति कृष्ण भगवान के प्रति दे देती है। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी यमुना जी में केशी घाट में स्नान कर रहे थे, तो यंग डिसाइपल्स थे, वो तुरंत कपड़ा निकाल के जंप कूद पड़े यमुना जी में। फिर प्रभुपाद जी धीरे धीरे अपने वस्त्र उतार रहे थे और धीरे से बोले कि यमुना जी में स्नान करने से पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ भक्त लोग बाहर आ गए यमुना जी से, अरे पुण्य भी नष्ट हो रहे। तो आपको क्या लगता है, पाप के साथ पुण्य नष्ट होना अच्छा है कि बुरा है? कितने लोगों को लगता है कि पुण्य नष्ट होना अच्छा नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। और कितने लोग लगता है कि पुण्य नष्ट होना अच्छा है? बाकी लोग न्यूट्रल है। पुण्य और पाप दोनों हमको जन्म लेने को मजबूर करते हैं। पाप के वजह से पाप का फल भोगने के लिए आना पड़ता है, और पुण्य करने से पुण्य का फल भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है। और शरीर धारण करने पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि त्रिविध ताप सब लागू हो जाते हैं, त्रिगुणों का परिणाम त्रिविध ताप सब लागू हो जाते हैं। एक लड्डू खाने का भी पुण्य फल बच गया ना, तो लड्डू खाने के लिए शरीर चाहिए, जन्म लेना पड़ेगा। और आपका क्या विचार है, पाप का फल अच्छा है कि पुण्य का फल अच्छा है? कभी सोचा आपने इसके बारे में? नहीं सोचा होगा। सोच लीजिए वृंदावन धाम में बैठकर कि पाप का फल अच्छा कि पुण्य का फल अच्छा, दर्द अच्छा कि सुख अच्छा, इसका उत्तर यह है कि पाप का फल अच्छा और दर्द भी अच्छा। क्योंकि जब पुण्य का फल प्राप्त होता है सुख के रूप में, तो भगवान को भूलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जब आदमी सुखी होता है ना, तो ज़्यादा भगवान को याद नहीं करते हो, बहुत ऐश्वर्य में है, बहुत सुंदर सुंदर भोग ले रहा है, उसके बाद में बहुत सुंदर शरीर है, यश भी है, कीर्ति है, सब लोग उसको सम्मान कर रहे हैं, तो भगवान को दिल से याद करने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम होती है। लेकिन जब दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, मान हानि होती है, तो फिर बहुत हृदय से भगवान को याद करते हैं, है ना। इसलिए पेन जो है ना, वो भगवान का वरदान है। एक्चुअली पेन इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड अपॉन अस, क्योंकि भगवान की वो बहुत इफेक्टिवली परिणामकारक रीति से वो याद कराता है। और इसलिए स्वर्गलोक का जो जीवन है वो पृथ्वी के जीवन से भी निम्न माना गया है, और पृथ्वी का मनुष्य जीवन स्वर्गलोक से जीवन से भी श्रेष्ठ माना गया है। बाकी बाहरी दृष्टि से तो बहुत हमारा जीवन घटिया है उनके सामने, लेकिन जो भगवान को भजन करने की पॉसिबिलिटी इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य जीवन में है, वो देवता लोक में भी नहीं है। वो महाविष्णु की माला लेकर आए दुर्वासा मुनि, तब भी इंद्र भगवान तो पूरे अप्सराओं का डांस देखने में बिजी थे। ऐसा लिया माला और हाथी को दे दिया, हाथी ने लिया और पैरों में कुचल दिया उसको। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में सारा साम्राज्य नष्ट हो गया और बलि महाराज सब लूट के ले गए। ये इस वर्ग का जीवन है। इसलिए पाप पुण्य में से अधिक डेंजरस पुण्य होता है। जहाँ भगवान की स्मृति होती है वही ऑस्पिशियस होता है। शुभ अशुभ की व्याख्या कैसी है, जो आपको भगवान की याद दिलाता है उसको शुभ मान दें, अगर वो दर्द भी हो तो भी वो शुभ है, क्योंकि वो भगवान की याद आपको दिला रहा है। इसलिए जमुना जी में स्नान करने के बाद में पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, और जमुना जी में स्नान करने से प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है भगवान की। यहाँ तक कि जमुना जी को अगर आप प्रेम से भी निहारोगे, देखोगे खाली हृदय से, तो भी प्रेम भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। जमुना जी इतनी महान है, और जमुना जी इतनी भगवान को प्रिय है कि भगवान का जन्म होते ही पहले ही भगवान जमुना में कूद पड़े, किसी कल्प में चरण स्पर्श दिया, किसी कल्प में पूरी तरह से कूद गए, वो पूरा स्नान किया उन्होंने। जन्म होते ही पहले अंग संग दिया जन्मा जमुना जी को उन्होंने, इतना जमुना जी प्रिय है। और जितनी भी लीलाएं हैं आप गिनते जाइए, अधिकतर लीलाएं जमुना किनारे हुई है। और जमुना ऐसी एक साक्षी है कि वो सारे रसों की लीला दर्शन करती है, जैसे गोवर्धन है। बाकी सब लोग तो अपनी अपनी लीलाओं का दर्शन करते हैं, जैसे माता पिता है तो वात्सल्य का दर्शन करते हैं, साख्य सखेला सखा लोग जो है वो साख्य लीला का अनुभव करते हैं, क्योंकि जमुना जी और गोवर्धन जो है वो भगवान के वात्सल्य शांत दास्य माधुर्य और सब लीलाओं का दर्शन करते हैं। शी इज़ अ विटनेस। यहाँ तक कि जब भगवान की पत्नियाँ रो रही थी भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद में, तो जमुना जी की लहरें आनंद से उमड़ रही थी, तो भगवान की रोती हुई पत्नियाँ बोली, तो आप भी हमारी सौतन हो ना, यू आर ऑल्सो को वाइफ, तो हम रो रहे हैं भगवान के खोने की वजह से, आप तो एकदम आनंद से उड़ रहे हैं। वो कहते हैं ब्रजवासिनी पत्नी हो भगवान की, और यहाँ पर किसी को दुख वुख नहीं होता है। दुख होने पर भी आनंद के अंतर्भूत ही दुख होता है, यहाँ का दुख भी परम आनंद का स्रोत है। और ये रहस्य राधा रानी से संपर्क होने से आपको समझ में आएगा। हम सब लोग राधा रानी से संलग्न हैं, इसलिए दुख होने पर भी हम लोग आनंद की लहरों में उमड़ते हैं। तो भगवान की पत्नियों को शिक्षा गुरु बनकर यमुना जी ने गाइड किया है कि अभी आप कुसुम सरोवर चले जाओ, वहाँ पर उद्धव जी के संग में आपको यह रहस्य का भेद होगा और वहीं पर आप अपने नित्य रूप को प्राप्त हो जाओगे। तो यमुना जी वो शिक्षा गुरु बनी है भगवान की पत्नियों की, होने के गाइडेंस के अनुसार वो कुसुम सरोवर गई है। वहाँ से उद्धव जी से उन्होंने भागवत सुनी है और उसके वजह से भागवत के अंत में वो सब अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गई हैं। यमुना जी का महिमा अगाध है बहुत। यमुना जी के किनारे पे सारे तीर्थ हैं, देखो केशी घाट, इमली तला, कालिया घाट, भ्रमर घाट, मदन टेर, जुगल घाट, पानी घाट, जगन्नाथ घाट, कितने सारे लीलाओं की स्थली है। ये तो फिजिकल लोकेशंस है, लेकिन यमुना ऐसा किनारा है कि यमुना किनारे में भगवान ने राधा रानी से बंसी बजाना सीखा है, बंसी की गुरु बनी हुई है वो। यमुना किनारे में भगवान ने राधा रानी से नृत्य सीखा है, ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं। यमुना किनारे में भगवान ने माटी खाई है गोकुल में, यमुना किनारे में कोयलो घाट पर भगवान गिर गए थे यमुना जी में। तो यमुना जी ये कृष्ण लीला का एक अविभाज्य अंग है, इनसेपरेबल प्रेजेंस। एनीवे यमुना जी की महिमा तो अगाध है, केवल समझना जरूरी है कि वृंदावन में आकर यमुना जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। और यमुना जी का आचमन करने से कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। गोवर्धन भी उसी तरह से है। गोवर्धन जी सत्ययुग में आए थे, द्रोण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे हिमालय में, द्रोणगिरी के पुत्र में रूप में। पुलत्स मुनि के लीला के अंतर्गत वो ब्रज में आए, तब हनुमान जी और सारे वानर भगवान राम के लिए सेतु बना रहे थे और वो सोच रहे थे कि समय की पाबंदी है, सीता देवी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं, अनलिमिटेड समय नहीं है वो डेकोरेटिव ब्रिज बनाने के लिए, एकदम इमरजेंसी में बन रहा है वो। तो सब हनुमान जी खोज रहे हैं कि ऐसा एक पर्वत मिल जाए जो एक ही झटके में पूरा बचा हुआ जगह जो है भर दिया जाए। तो वो गोवर्धन को देखते हैं और गोवर्धन को उठा लेते हैं। बड़ी लंबी कथा है, मैं आपको संक्षेप बता रहा हूँ। लेकिन उठाने के बाद तुरंत आकाशवाणी होती है कि अभी वो सेतु पूरा हो गया है, अभी कोई पर्वत की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी उसको लेके वापस नीचे रख देते हैं। तो वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं गोवर्धन जी के, मैं सत्ययुग से वेट कर रहा हूँ कि प्रभु की सेवा मिलेगी, द्वापर के अंत में मिली, सॉरी त्रेता के अंत में मिली, वो भी गई निकल गई। बहुत बहुत रोए वो, तो उनका रुदन रोना देखकर हनुमान जी बड़े विस्मयचकित हो गए कि ऐसा भी कोई भक्त हो सकता है। तो प्रभु राम को सब वर्णन किया उन्होंने कि ऐसा मुझे एक आपके भक्त की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा हाँ वो मेरा भक्त है गोवर्धन, अभी सेवा नहीं मिल पाई तो इसलिए रो रहा था वो। अगले अवतार में मैं उसे 7 दिन और 7 रात मेरे सर पे धारण करूंगा छतरी के रूप में, मेरे ऊपर धारण करूंगा उसको, और मेरी सारी जितनी अंतरंग लीला है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स वो उसके इर्द गिर्द मैं संपन्न करूंगा, ऐसा वरदान दिया भगवान ने। ब्रजवासी लोग कैसे बताते हैं कि 7 कोस की जगह बची थी और 7 कोस का एक ही पर्वत वो ढूंढ रहे थे और वो गोवर्धन थे 7 कोस वाले। तो 7 कोस वाली सेवा वो नहीं कर पाए, इसलिए भगवान ने 7 दिन 7 रात उनको छत्र के रूप में अपने शीश के ऊपर धारण किया। तो गोवर्धन जो है वो भागवत में इनका वर्णन आता है, अलग पुराणों में वर्णन आता है कि गोवर्धन भगवान को हर तरह से संतुष्ट करता है। भगवान की लीला में क्या क्या चाहिए, वातावरण चाहिए, भाव चाहिए, या गिरिकंदर चाहिए, गुफा चाहिए, झरने चाहिए, तो सरोवर चाहिए, तालाब चाहिए, हरियाली चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, रत्न चाहिए, माणिक चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए, हाँ पर्वत के समुदाय चाहिए, पर्वत का दृश्य चाहिए, हर प्रकार से गिरिराज गोवर्धन भगवान के लीला के अनुकूल वातावरण निर्मित करता है। और भगवान के गायों को भी पालन लालन करने के लिए सुंदर सुंदर स्वादिष्ट कमल के गंध वाला घास भी देता है, इसलिए भगवान वहाँ पर दास्य लीला करते हैं, साख्य लीला करते हैं, वात्सल्य लीला करते हैं, माधुर्य लीला करते हैं, सब प्रकार की लीला गोवर्धन के किनारे में करते हैं। प्रभु जी माधवेंद्रपुर की कथा बता रहे थे, वो गोविंद कुंड में हुई है, तो श्री गिरिराज का दर्शन आपने किया? नहीं किया, बाकी है ना अभी। तो गिरिराज की महिमा भी अगाध है। गिरिराज को भी केवल देखने मात्र से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। गिरिराज के किनारे में अनेक कुंड है, हर एक कुंड में भगवान ने अलग अलग सुंदर सुंदर लीला की है। और इसी गिरिराज को भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया था, और वो एक उंगली के स्पर्श की वजह से घनघोर वर्षा हो रही थी, उसको मुसलधार वर्षा हो रही थी। हाँ, ऐसा कहते थे कि गोवर्धन के अंदर से हाथी घोड़े सॉरी हाथी शेर चित्ता सिंह सब डर के मारे भाग गए, मतलब वो गुफाओं से भागने लगे वहाँ से, और मुसल के समान वर्षा हो रही थी। कितना आघात था भयंकर वो, लेकिन भगवान के उंगली के अग्र भाग के केवल स्पर्श मात्र से गोवर्धन की सारी पीड़ाएं नष्ट हो गई। एक भी कर्ण पीड़ा का अनुभव नहीं किया गोवर्धन ने, उल्टा अति आनंद परमानंद का अनुभव किया, जरा सा भी कष्ट का अनुभव नहीं किया। अगर 700 दिन भी भगवान खड़े रहते तभी गोवर्धन आनंद से खड़ा रहता। गोवर्धन की ये बहुत बड़ी महिमा है, वो भगवान को आह्लाद देने वाले हैं। प्रभु राम और बलराम जी और कृष्ण जी वहाँ पर स्वच्छंद विहार करते हैं, अपने गायों को चराते हैं और बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये गिरिराज जी की परिक्रमा करने से भगवान बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, और ये गिरिराज जी का परिक्रमा सब भक्तजन करते हैं, उनके चरणों की सेवा के रूप में करते हैं। लेकिन सबसे पहली गिरिराज की परिक्रमा किसने की है? स्वयं भगवान कृष्ण ने की। स्वयं भगवान कृष्ण द फर्स्ट ओरिजिनेटर, द फर्स्ट परफॉर्मर ऑफ गोवर्धन परिक्रमा, श्री कृष्णा हिमसेल्फ। ब्रह्मा जी भी, हाँ ब्रह्मा जी बहुत सारे वर्णन है, प्रयागराज, ये सब लोग अपने अपने पापों को धुलने के लिए गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। कई पुराणों में कथा आती है कि प्रयागराज जो है काले होकर परिक्रमा दे रहे हैं, और परिक्रमा करते करते पूरे तेजवान हो जाते हैं। ऐसे सभी पापों को सभी बंधनों को नष्ट करने वाला श्री गिरिराज भगवान का पर्वत है, और वो भगवान से भी अभिन्न है। हाँ, जैसे अभी आप नंदगांव गए आज, वहाँ पर नंदीश्वर पर्वत है, बरसाने में गए वहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत के रूप में विराजमान है। तो ये कौन है सब? ये ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं तीनों, और गिरिराज जी स्वयं विष्णु स्वरूप हैं, इसलिए गिरिराज पर चढ़ना मना है। महाप्रभु चैतन्य भी उस पर चढ़े नहीं थे। तो पुराण में वर्णन आता है कि प्रभु रामचंद्र ने अपने हाथों से इन तीनों पर्वतों को स्थापित किया था। और ये तीनों पर्वत क्यों बने? क्योंकि सती अनसुया ने उनको शाप दिया था। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनसुया की सतीत्व का परीक्षा करने के लिए अपने पत्नियों के कहने से गए थे, तो उन्होंने वात्सल्य प्राप्त किया अनसुया से और वरदान मांगा उन्होंने कि हम आपके पुत्र बनेंगे। तो भगवान दुर्वासा मुनि शिव जी के अंश के रूप में प्रकट हुए, और विष्णु स्वयं दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। लेकिन साथ साथ में अनसुया ने उनको शाप भी दिया कि आपने मेरे सतीत्व का परीक्षा लेना चाहा, इसलिए आप सब पत्थर बन जाओगे। तो वो बने ब्रह्माचल, नंदीश्वर और गिरिराज गोवर्धन, और भगवान प्रभु रामचंद्र ने उनको किसी एक कल्प में उनको स्थापित किया है। ऐसा है गिरिराज जी का महात्म्य। स्वयं भगवान विष्णु है, वो हर प्रकार से भगवान को उनकी लीला में सहायता करते हैं। तो और अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे उसमें, आपको केवल मैंने सतर्क करने का प्रयास किया है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें नहीं कह सकते उनको, ये जो व्यक्तित्व है, ये जो अस्तित्व है, ये ब्रज का एक असामान्य अविभाज्य अस्तित्व है। यू कैनॉट निग्लेक्ट दिस, और पूरे हृदय के भाव के साथ में इनका दर्शन, इनका संग, इनकी परिक्रमा, जमुना जी के अंदर स्थान ये करना चाहिए। इसके अंदर इतनी शक्ति है। मैं आपको एक कथा बताता हूँ प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी की शिष्या है यहाँ पर कुशा माता जी, तो वो उन्होंने कथा बताई थी कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य बने जो अमेरिका के आर्मी में बहुत बड़े अफिसर थे, और वो उनका ऐसा अनुभव था प्रभुपाद जी को, उन्होंने बताया जब भक्त बने कि प्रभुपाद जी मेरे बाहों में 400 सैनिक मरे हुए हैं युद्ध में। जब भी युद्ध होता है तो मरणासन्न अवस्था में मेरा ये भाग्य था कि मैं उनको गोद में लेकर उनका देहांत हो गया। ऐसे 400 लोगों का देहांत मेरे हाथ में हुआ है, लेकिन हर समय वो मरते समय मैंने ये देखा है कि वो एकदम भयभीत होकर मर जाते हैं। सबको देखा है भयभीत होते हुए, कोई भी शांति से नहीं मरा है। तो क्या चीज़ है? तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि ये यमदूत आते हैं और उन्हें बताया कि अगर आप जमुना जी का जल उनके मुंह में डालोगे तो यमदूत का भय नष्ट होगा, वो शांति से शरीर त्याग देंगे। ये कथन सुनने के पश्चात वो भक्त जो था आर्मी का ऑफिसर, इतना प्रेरित हो गया, उसके बाद में उसके जीवन भर उन्होंने हमेशा जमुना का जल अपने साथ में कैरी किया। उसका उस जब वो थे यहाँ पर, जो चले गए वो जब थे यहाँ पर, तो ब्रिज में भी वो फेमस थे, वो सब जगह जमुना जी का जल लेके घूमते थे, कोई अगर मरता होगा तो उसके मुंह में डालते थे। स्वयं कुशा माता जी जो है, उसके पिताजी मरणासन्न अवस्था में आए, टर्मिनल स्टेज पे आए वो, तो कुशा माता जी को वृंदावन रहते, तो यहाँ से वो चली गई जमुना जी का बोतल लेके चली गई वो, और 15 दिन अपने पिता के संग रही और बहुत अच्छा संबंध रहा उनका। लास्ट स्टेज में, इसको हम क्या कहते हैं हमारे हॉस्पिस में, क्या कहते हैं एक्टिव स्टेज ऑफ डाइंग, उसमें मरने की प्रक्रिया शुरू होती है और वो धीरे धीरे कुछ घंटों में आदमी का देहांत होता है। तो जब वो पिताजी उनके अमेरिका में हवाई में उस स्थिति में आ गए, तो वो समझ गए कि अभी पिताजी लास्ट स्टेज में आ गए, तो एकदम वो डर डर के चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, और कैसे मानो किसी से संघर्ष कर रहे हैं, किसी से युद्ध कर रहे हैं, किसी के साथ जूझ रहे हैं, ना ऐसे ही होता ना, मारामारी कर रहे हैं, ऐसे कुछ उनको लग रहा था कि वो अभी संघर्ष कर रहे हैं किसी के साथ, और किसी वस्तु के साथ संघर्ष नहीं कर रहे हैं, किन व्यक्तियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लुक्स लाइक ही स्ट्रगलिंग विद सम पीपल। तो बहुत पसीना, बहुत डर, बहुत चिल्लाना, ऐसा वैसा चालू हो गया। तो अचानक उनको याद आया करके मैं जमुना जी का जल लेके आई हूँ, तो थोड़ा अंदर जाके भाग के आई, जमुना जी का जल लेके आई, और इसके पहले वो कई घंटे संघर्षपूर्ण भयभीत अवस्था में थे, और जैसे ही जमुना जी का जल उनके मुंह में डाला उन्होंने, एकदम शांत हुए, ओह ऐसे किया उन्होंने, और जो बिस्तर के ऐसे आगे थे एकदम बिस्तर पे जाके एकदम से ओह करके गिर गए, और इतने थक गए थे तो सो गए। सो के जब उठे तो तुरंत कुशा माता जी को बुलाया, आ जाओ बताओ बताओ वो क्या था तुमने मुझे दिया था। वो पप्पू बोले, पापा मुझे पहले बताओ क्या हुआ था आपको। बोलते, वो चार लोग आए थे मुझे लेने का प्रयास कर रहे थे और मैं संघर्ष कर रहा था, बहुत देर मैंने संघर्ष किया, वो भी संघर्ष कर रहे थे मुझे लेने के लिए, मैं संघर्ष कर रहा था छूटने के लिए, और उस समय पता नहीं आपने मुझे मुंह में क्या डाला, और जैसे ही मेरे मुंह में वो गिरा वो चार लोग भाग गए, दे रैन अवे। सो आई वॉन्ट टू नो वॉट इज दैट वॉट यू गेव मी। उन्होंने बताइए, मैंने आपको जमुना जी का जल दिया है, ये क्या होता है जमुना जी का जल। बोले, जमुना नाम की नदी है हमारे यहाँ पर, उसका महात्म्य सुनाया, वो मुझे और दो बोला उन्होंने, प्लीज गिव मी मोर। वो देती रही उनको, और जब एक्चुअल उनका देहात हो गया तभी कोई संघर्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, शांति से शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो ये मत समझना कि लोगों को डराने के लिए यमदूत का हवा बना के रखा है, ये सब सत्य है। हाँ, हमारे हॉस्पिटल में आइए, आपको पता चलेगा क्या होता है एक्चुअली। ये हमारे हॉस्पिटल पेशेंट आते, बोलते हैं माता जी आप मत जाइए, वो खिड़की पर बैठे हुए हैं, जब तक आप रहते हैं ना तब तक खिड़की पर रहते हैं, जब जाते हैं तो खिड़की से उतर के मेरे पास में आते हैं, प्लीज डोंट लीव मी। हाँ, ये भागवतम शास्त्र जो है वो कहानी है, कपोल कल्पित कहानी नहीं है, ये सब सत्य है। और जमुना जी के जल के स्पर्श से यमदूत भाग जाते हैं, तो विश्वास होना चाहिए इस बात पर। ब्रज रज के स्पर्श से, यहाँ के रज के स्पर्श से, जमुना जी का जल के स्पर्श से, अगर समझो कोई वेंटिलेटर पे है तो आप जल दे सकते नहीं उसको, तो आप उसके सर पे डालिए उस जल को, यमराज वहाँ पर नहीं आ सकते, यमराज प्रूफ थिंग्स। ऐसी महान चीज़ें हैं ये, हाँ महान वस्तुएं हैं, इनका आदर करना सीखना चाहिए, बहुत बलशाली वस्तुएं हैं ये। इनका जमुना जी का ऐसा महात्म्य लिखा गया है कि जमुना जी का स्मरण मात्र से भी यमदूत भाग जाते हैं, जमुना जी के स्मरण मात्र से भी भक्ति प्राप्त होती है भगवान से, इसलिए वृंदावन धाम महान धाम है, क्योंकि हर वस्तु यहाँ संबंधित जो वस्तु है वो हर वस्तु प्रेम भक्ति प्रदान करने वाली और पाप पुण्य को नष्ट करने वाली है। या आपके जीवन का बेड़ा पार कर सकती है। अभी आप वृंदावन में आए हो ना, सही चेतना में रहोगे यहाँ पर, तो केवल इसी एक यात्रा से आपका गोलोक का वीजा फिक्स है। अरे आपको साधना करके आपके विकारों को नष्ट करके इस वीजा को एक्टिवेट करना है और टिकट निकालना है। वृंदावन में आना ही आपका वीजा फिक्स है गोलोक धाम का। ऐसे इस महान धाम में आप आए हो, इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस महान धाम में आकर एंजॉय करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। डू नॉट कम एंड ट्राई टू एंजॉय हियर। हाँ, ये भोग भूमि नहीं है, ये भक्ति भूमि है। यहाँ पर भोग करेंगे तो कैसा हुआ था उधर उत्तराखंड में, पता है ना आपको? उत्तराखंड में इतना भयंकर हाहाकार क्यों मचा? क्योंकि वह तपस्या की भूमि है। यहाँ पर केवल तपस्या करनी होती है विरक्त भावना में जाकर। वहाँ पर जाकर बिस्लेरी बॉटल, आलू के पराठे और पनीर की सब्जी नहीं खाना होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो गई। लोग साइट सीइंग के लिए पहुँचने लगे, लोग हनीमून मनाने के लिए पहुँचने लगे, हनीमून की व्यवस्थाएं वहाँ होने लगी, होटल्स वैसे फैसिलिटी देने लगे। तो तपस्या की भूमि जो है भोग भूमि बनाने का प्रयास किया गया। तपस्या का भूमि जो होती है तो तपस्या का फल देने के लिए पूर्ण संपन्न है वो, उसमें भोग लेने का प्रयास मनुष्य कर रहा है, तो प्रकृति ने दंड का दे दिया उसको अच्छी तरह से। सारे जो जो ऐसे बनाए गए थे सब टूट के जमुना जी में, गंगा जी में सब गिर गए। तो हर एक भूमि का एक महात्म्य है, उसको मनुष्य को पहचानना चाहिए। तो वो तपस्या की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, और दोनों भोग की भूमि नहीं है बाय द वे। इसलिए यहाँ पर जो मिले संतुष्ट रहकर यहाँ पर अपना जो पर्पज़ है उस फुलफिल करने के लिए रहना चाहिए। और जो भूमि जिस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है वो चीज़ अगर आप पाने का प्रयास करेंगे तो वो दे सकती है आपको, लेकिन भक्ति प्रदान करने वाली भूमि आपको भोग कैसे दे सकती है? पंजाबी होटल में जाके साउथ इंडियन खाना कैसे मिलेगा आपको? नॉट पॉसिबल है ना। वो पंजाबी बोलेगा इडली है क्या आपके पास, बोलो इडली क्या होती है। वैसे तपस्या की भूमि में जाकर भोग मांगेंगे तो कैसे मिलेगा भोग? भोग मांगेंगे तो दंड का मिलेगा, दंड मिलेगा उसका। वैसे ही वृंदावन ये जो है ना भजन की और प्रेम की भूमि है, माधुर्य भूमि है ये। इसमें यहाँ तक महात्म्य है इस भूमि का कि यहाँ पर भगवान को भगवान के रूप में भी लोग पहचानते नहीं है, इतनी महान भूमि है ये। द्वारका श्रीरंगम और बाकी भूमि में भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं, दंडवत प्रणाम, लेकिन यहाँ की भूमि में ऐसा रस है कि वो जो सच्चा प्रेमी भक्त है वो भगवान को भगवान के रूप में देखता ही नहीं है। वो कोई सखा के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई प्रेयसी के रूप में, कोई बालक के रूप में, इस तरह से यहाँ पर भाव होता है। और भगवान भी यहाँ पर, यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ पर भगवान अपना भगवत्ता जो है ना, भगवत्ता बीइंग गॉड, वो भूल के यहाँ पर आते हैं, वो छोड़ के आते हैं वहाँ पर। इतना डिफिकल्ट है ना, अभी मैं कहाँ पर जाऊँगा ना और मुझे कोई पहचानता नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा? किसी न किसी बहाने बताऊंगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाने हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरा पहचान परिचय देने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर भगवान अपनी सारी भगवत्ता, जो भगवान है परम पुरुषोत्तम, वो ही छोड़ के यहाँ पर आते हैं, एक सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं, एक चोर बनते हैं, माखन चुराते हैं, छाछ चुराते हैं। इतनी महान भूमि है ये, और यहाँ का जो स्थिति है वो इतना महान है कि भगवान कभी कभी अपना ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास करते हैं तो ब्रजवासी जन उसको क्या कहते हैं, उसको डिफीट कर देते हैं। इट ट्राइज समटाइम्स टू शो बट दे डिफीट इट कम्प्लीटली। इतना यहाँ पर प्रेम का प्रभाव है, दैट काइंड ऑफ पावर द एटमोसफेयर ऑफ लव हियर हैज, जिससे भगवान का ऐश्वर्य यहाँ टिक नहीं पाता है, होने पर भी टिक नहीं पाता है। वो देख रहे हैं गिरिराज को उठाया, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति गिरिराज को कैसे उठाएगा, इतने बड़े पहाड़ समान अरिष्टास को कौन मार सकता है? तो इट इज़ ऑब्वियस कि ये कोई अद्भुत व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद सोचते हैं कि ये तो हमारा बालक है। तब ब्रजवासी बोलते हैं अरे नंद यशोदा, तुम्हारा बालक तो बड़ा सिद्ध पुरुष होगा, कोई ऋषि होगा या तो कोई देवता होगा। तो बोलते क्या देवता है, जब आकाश में बिजली कड़कती है ना तो भाग के मम्मी को गोद में आता है, मम्मी डर लग रहा है। कोई देवता सिद्ध पुरुष डरता है क्या उससे आकाश? और वो देवता सिद्ध पुरुष कैसे हो सकता है, जरा सा माखन नहीं मिला तो जाके हमारे घर में आके बच्चों को चिमटा लगाता है, तो कान में पानी डालता है, नींद से जगाता है बच्चों को, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो हमारे घर में आके पेशाब करके चला जाता है। ये क्या देवता के लक्षण है? ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है, योगियों के लक्षण है। मतलब उसकी महानता और महान लीलाएं प्रकट हो रही है एक दिव्य लीला के रूप में, क्योंकि अद्भुत व्यक्ति कर सकता है ये। लेकिन जब चर्चा हो रही है तो वो अपने आप चर्चा जो है ना वो एक्सटिंग्विश हो जाती है इस सारी चर्चाओं से, इट गेट्स डिफीटेड। आप लोग नंद बैठक गए क्या? नहीं ना, नंद बैठक गोकुल में भी है, इधर भी है। नंद बैठक की विशेष लीला ये, नंद बैठक में रोज भगवान की महान लीलाओं की चर्चा होती है। और उसका एंड कैसे होता है? नंद बाबा ऐसा कुछ बता देते हैं उनको तो पेट पकड़ पकड़ के सीट से गिर जाते हैं और जमीन पे लोट लोट होते होते रोते रोते हंसते हंसते फिर चले जाते हैं। और सब लोग भूल जाते हैं कि ये देवता नहीं है, देवता है या सब कुछ जो भी वहम उनको हुआ सब भूल के, नहीं कुछ भी नहीं, हमारा तो डियर मोस्ट कान्हा है, ये सोच कर सब घर चले जाते हैं एवरीडे। खास करके गोवर्धन के जिला में भी ऐसे ही हुआ था एंड में, लेकिन सब लोग बोले कि कुछ नहीं देवता वो तो कुछ नहीं, ये तो अपना कान्हा है, आई मस्ट ट्रेन हिम प्रॉपरली। ऐसा है, इतनी महान भूमि है ये, यहाँ पर भगवान भी बड़ा आनंद लेते हैं, इतना आनंद लेते हैं कि वैकुंठ में उनके पास क्या कमी है बताओ। अनंत लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती, इतना ऐश्वर्य है, क्या चाहिए उनको, सब कुछ उपलब्ध है, सुपर फ्लोअस क्वालिटी। लेकिन वैकुंठ का सारा आनंद छोड़कर वो यहाँ पर गोपियों का मक्खन चुराकर खाने के लिए आते हैं। कितने महान होंगे यहाँ के ब्रजवासी, सोचो यहाँ के निवासी कितने महान होंगे जिनके घर चुरा के खाने के लिए आते हो। वो नवनीत भी उनका ही है, वो ब्रजभूमि भी उनकी ही है, वो लोग भी उनके ही है, फिर भी उनके घर पर एक बालक चोर बनकर जाकर वो उनका माखन चुराने का प्रयास करते हैं। इसमें से ब्रजवासियों की महानता प्रसन्न प्रकट होती है। वो उधर गए ना नंद द्वारका में गए, उधर भी रोते थे वो, ब्रजवासियों की याद में रोते थे। और जब रोते थे तो उनके असुरों से नदी बनी है गोमती नदी, गोपियाँ भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे हमारे याद में रोते हो, हमने सुना है कि वह नदी बनी हुई है, अच्छा हमको दिखाओ दर्शन कराओ। तो भगवान ने गोमती नदी को पकड़ किया कोशी में, ऐसे ब्रजवासी जन हैं जो भगवान के लिए, उनका जीवन खुद के लिए है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं द्वारका में गया, इधर गया उधर गया, लेकिन मैं कभी ब्रज को भूल नहीं पाया, मैं ब्रज गोपियों को कभी भूल नहीं पाया, मेरे सखाओं को भूल नहीं पाया, मेरे गायों को भूल नहीं पाया, मेरे मैया को भूल नहीं पाया। रात को ऐसे उठते थे वो 16,108 महलों में, रात को खड़े होकर रोते थे बहुत जोर से। तो पत्नियां बोलती थी प्रभु क्या परेशानी है आपका, बताइए क्या हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन वो कहते नहीं, वो नहीं बता सकता आपको मैं। वो तो खाना खाते हुए कभी ऐसे तुरंत रोने रोते रो पड़ते थे, तो सोचते थे कि क्या हमारे खाने में कुछ गलती है, कुछ नमक ज़्यादा, कुछ कुछ परोसने में कुछ डिफिकल्टी है, भाव में कुछ कमी है, बता दो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, लेकिन आप हमेशा आप हमारे सामने जब भी आते कभी कभी आप दुखी दिखाई पड़ते हो। तो कहते नहीं नहीं, तो एक लंबी लीला है जिसमें भगवान ने अपनी रानियों को सभी ब्रजवासियों का महानता दिखाया कि कैसे सारे द्वारका वासियों से भी वो एक यकश्चित सामान्य जो स्त्री और सामान्य पुरुष है ब्रज का वो भी उनसे कितना महान है। वो अनंत साल के लिए नरक में रहने को तैयार है, लेकिन भगवान को एक क्षण का सुख देने के लिए भी वो अनंत जन्मों के लिए नरक में रहने के लिए तैयार है, ऐसे ब्रजवासी यहाँ रहते हैं। अभी वो तो आप कहेंगे प्रभु तो वो द्वापर युग के महान भक्तों की, वो नित्य सिद्ध भक्तों की आप कथा कर रहे हो। अभी मैं आपको एक कथा बताता हूँ जो हमको राधानाथ महाराज ने बताई थी ब्रजवासियों के बारे में। वो ये है कि यहाँ पर एक बहुत खूंखार डाकू था, अभी नॉट इवन 50 ईयर्स बैक। वो इतना खूंखार डाकू था, वो ब्रजवासी था और वो इतना क्रूर था कि वो कितने लोगों को मार डाला था उसने, लेकिन था ब्रजवासी, जन्म यहाँ का होता उसका। तो पुलिस ने ऑर्डर दिया था कि शूट एट साइट, जब भी दिखेगा ना किधर भी उसको गोली से बोछार से खत्म कर दो, शूट एट साइट बहुत भयंकर ऑर्डर होती है, कहीं भी दिखाई दिया किधर भी कुछ करते हुए शूट। तो बहुत देर तक वो पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई ना मार पाई। एक दिन वो किधर वृंदावन में दिखाई पड़ा, तो जो पुलिस ने तुरंत अलर्ट सबको कर दिया और गोलियों से भून दिया उसको पूरा, तो एकदम वो अभी मरने वाला था। तो क्या क्या होगा उसने, इमेजिन क्या क्या होगा। वो डाकू जो था वो सीधे बिहारी जी के मंदिर में आया और बिहारी के सामने हाथ जोड़ा उसने ऐसा, और वहीं गिर गया वो। तो महाराज ने कहा दिस इज ब्रिजवासी, हाँ बाहरी दूसरे डाकू है वो, बहुत पाप कर्म की है उसका, उसको जो भी सुअर बनना है जो भी कुछ फल मिलेगा उसको, लेकिन मरने के समय वो दिल में इतनी गोलियां लगी हुई है, खून बह रहा है, मरने वाला है, तो भी वो बाकी बिहारी के मंदिर में आया, वो दर्शन किया बाकी बिहारी का, वो सामने मर गया वो। दिस इज ब्रजवासी, मतलब हमको एक्चुअली हम ब्रजवासी को पहचान नहीं सकते वो क्या है। ब्रजवासी एक महान महान लोग हैं ये, इनके हृदय में कृतज्ञता एक बहुत महान गुण है। वो कभी उनके लिए आप एक कुछ सेवा करोगे ना तो जिंदगी भर याद रखेंगे आपको, और बार बार आपको महाप्रसाद भेजेंगे, प्रार्थना करेंगे आपके लिए, को प्रेम करेंगे। हाँ, मैंने किसी गोसाई के यहाँ पर 1992 में एक सेवा की थी, आज भी मैं वहाँ पर VIP हूँ जब भी जाता हूँ तो। कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, आज भी मेरे हॉस्पिस में वो लंच का महाप्रसाद भेजते हैं, माला भेजते हैं, वहाँ पर भोजन के लिए बुलाते हैं, महाप्रसाद खिलाते रहते हैं, माला क्या 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 करते रहते हैं, अनलिमिटेड थिंग्स कीप डूइंग। एक सेवा किया था उसका, वो आपने सुबह कथा सुनी नंद बाबा नंद महाराज के, वो हमारे गोसाई हैं ना रमेश चंद्र गोस्वामी जी, वो भी वैसे ही सच्चे ब्रजवासी हैं, ऐसे उनके अंदर अनंत गुण है, लेकिन एक कृतज्ञता का गुण जो है ना उनके, ऐसा अनबिलीवेबल गुण है वो उनके पास। उनके पिताजी की जो नंदन शास्त्री थे, उनके पिताजी देवकी नंदन शास्त्री, वो बड़े भागवत के बड़े ज्ञाता थे। वो आप कहीं से भी कोई श्लोक बोलो भागवत का, उसका आगे पूरा भागवत सुनाएंगे आपको, उनको कंठस्थ था भागवत, बड़ी विभूति। हमने उनको दर्शन किया है, सेवा किया है, मेरे घर पर एक महीना रहे वो। तो वो प्रभु जी जब हमारे घर पे आए थे तो उनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था, तो उस प्रोस्टेट के ऑपरेशन में बहुत सारे भक्तों ने उनका सेवा किया था। आज भी वो सारे भक्तों के लिए प्रसाद भेजते हैं। तो एक दिन हमारी ललिता माता जी जो थी, उसकी डिलीवरी, सेकेंड डिलीवरी में बहुत कष्ट हो रहा था उनको, तो वो अपने घर पे उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने वो घर पे बैठ गए भगवान के सामने और जप करने लगे उसके लिए। तो मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि ललिता ने क्या सेवा किया था उनका, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो मेरी पत्नी ने बताया कि ललिता देवी एक रात को उनके ICU में उनकी सेवा के लिए रुकी थी, जब उनका एक बार वॉल्व का ऑपरेशन हुआ था, एक बार प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था, तो वॉल्व के ऑपरेशन के टाइम पे 94 में ICU में एक रात वो उनके साथ में रुकी थी, इसलिए वो याद में याद रखे उनके लिए, अभी जो कष्ट में है उसमें उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, एक ब्रजवासी जो सच्चा गोसाई है, ब्रजवासी है, जो अपने धाम में बैठकर अपने भगवान को आपके लिए अगर प्रार्थना करता होगा, उसके आगे आपको क्या चाहिए, और व्हाट डू यू वांट। मैंने राधा महाराज जी को भी बताया था कि ये जो गोसाई है वो मेरे लिए गर्भगृह में राधा वल्लभ के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो इसे विश्वरूप, व्हाट एल्स यू वांट इन लाइफ। तो ऐसा है ये सब, इनसे कृतज्ञता सीखनी चाहिए, हाउ टू रिमेम्बर। हम लोग कैसे हैं, एक दो दिन याद रखते हैं, बाद में भूल जाते हैं, बाद में झगड़ा करने के लिए भी तैयार रहते हैं उस आदमी से, पिछला पूरा उपकार भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन ब्रजवासी ऐसा एक व्यक्ति है जो कभी भी किया हुआ उपकार भूल नहीं जाते। दे ऑल आर सो मच डिवाइन क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी उनके पास है देना, वो आप जाएंगे ना कभी संकोच नहीं करेंगे। हम लोग एक बार वो सूर्यकुंड पे गए थे यात्रा लेकर, उस समय 2000 की यात्रा थी हमारी, जब से हम यात्रा करने गए तो उन्होंने क्या किया मालूम है, ब्रजवासी लोगों ने अपने हर घर के सामने इतना बड़ा छाछ का मटका लगा दिया, कम से कम 15-20 घर के सामने मटके लगा दिए, और सब लोगों को फ्री छाछ पिलाया। ऐसा भी नहीं एक आदमी एक गिलास, ऐसा नहीं, जितना चाहे उतना पियो, और कैसे खत्म हो रहा है तो दूसरा लेके आ रहा है, दूसरा लेके आ रहा है। 2000 लोगों को छाछ पिलाया, सोचो आप, इमेजिन। और कभी भी आप किसी भी ब्रजवासी घर पर जाओ, मैया भूख लग रही है कुछ खाना खिलाओ, तुरंत आपको गरम गरम रोटी खिला के देंगे। ये हमने अनुभव किया है कई बार, अभी भी करते हैं अनुभव। ऐसा आप लोग कर सकते मुंबई में? पहले तो बोलेंगे कुत्तों से सावधान, ऐसा बोर्ड मिलेगा आपको, फिर सिक्योरिटी, फिर थंब प्रिंटिंग, बायोमेट्रिक, उसके बाद सिक्योरिटी पूछेगा कहाँ जाना है आपको, फिर आप जाली खोल के देखेंगे कौन हो आप। मैंने अनुभव किया है, एक माता जी जो है वो अपने बालक को लेकर उसको स्कूल ले जा रही है, वो आपको पहचानती है, और अचानक आप उसको मिलते हो बहुत दिन के बाद में, तो भैया कैसी हो, अरे तुम कैसे हो, कब आए, क्या किया, तो अचानक अपना जो बेबी का टिफिन है ना, रोटी और दी का, तो आपको दे देती है वो। तो आप बोलेंगे नहीं भैया तो बेबी का टिफिन है वो, अरे बेबी का टिफिन और बन जाएगा, मैं जाके स्कूल में दे दूंगी, आप कब दोबारा मिलोगे, लो आप इसको खाओ। ऐसा कौन कर सकता है, एक ही ब्रजवासी कर सकता है। ये जो प्रेम है ना उनके हृदय में ठसाठस भरा हुआ है भगवान का प्रेम, इसलिए उनके बाहर के व्यवहार से कभी आप विचलित मत होना कि आपने रिक्शा वाले ने 2 रुपये ज़्यादा दिया और इधर से कुछ झगड़ा किया, कुछ गाली दे दी आपको, डोंट वरी। हाँ, उनको दुख मत पहुँचाओ कभी, अरे 2-4-5 रुपये तो हमारे बम्बई में ऐसे निकालते निकालते गिर जाते हैं, क्या है उसमें बड़ी बात है, इज इट नॉट ट्रू। जब आप पाव भाजी का स्मेल आपको आता है, आप तुरंत निकालने का, एक आध नेट गिर जाता है, आप उसकी परवाह नहीं करते हो कितना चीज़ गिर जाता है। और यहाँ पर आके रिक्शा वाले से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे ही 2 रुपए के लिए, 4 रुपए के लिए घास रेस कर रहे हो, जस्ट मेक देम हैप्पी। हाँ, रिक्शा वाला भी यहाँ पर आपको पूरा भगवद्गीता का तत्व ज्ञान सुनाएगा चलाते चलाते। बिलीव मी, आई हैव हर्ड इट, आई एम नॉट जोकिंग। आपको यहाँ से वहाँ छोड़ रहा है तो आपको पूरा भगवद्गीता का तत्व ज्ञान सुना सकता है वो। ही कैन टेल यू कॉन्स्टेंटली चैंटिंग राधे राधे, इज इट नॉट। हम लोग करते क्या कॉन्स्टेंटली राधे राधे? नहीं करते। इसलिए यहाँ का हर जीव जो है भाग्यवान है, यहाँ का कुत्ता भी भाग्यवान है, यहाँ का सुअर भी भाग्यवान है। हम लोग देखते हैं कि सुअर है बंदर है, लेकिन यहाँ का हर जीव भाग्यवान है, क्योंकि यहाँ के हर जीव का जो जन्म यहाँ पर हुआ है उसका वो आखिरी जन्म है। वो अगर सुअर दोबारा बन के भी आएगा तो इधर ही आएगा और बम्बई में नहीं जाएगा वो। यहाँ पर वो डाकू ने जो पाप किया है वो यहाँ पर यहीं आएगा सुअर बन के, वो यहीं कष्ट भोगेगा, लेकिन ब्रज के बाहर नहीं जाएगा वो। ये उसके लिए फुल प्रूफ गारंटी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको यहाँ जन्म लग के पाप करना चाहिए, लेकिन उनका महात्म्य है, उनके जन्म का महात्म्य है ये। इसलिए यहाँ आने के बाद में ब्रज भूमि का आदर, जमुना जी का आदर, ब्रजवासियों का आदर, सबका, बाह्य दृष्टि से किसी को पहचानने का प्रयास मत करना। डोंट जज एनीबडी बाय एनी डैम अंडरस्टैंडिंग, जस्ट बाउ डाउन टू देम, रिस्पेक्ट देम, बिकॉज़ दे आर हियर। क्योंकि राधा रानी किसी को यहाँ रखेगी नहीं जो यहाँ रहने के योग्य नहीं है। यहाँ को आने के लिए भी उसको देगी जो योग्य है, और रखती उसको उसको ही है जो यहाँ पर रहने के योग्य है। चाहे कुछ भी करता होगा उठा, राधा रानी उनके बीच में हिसाब किताब हो जाएगा, हमें बीच में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे ये यहाँ के धाम का महात्म्य जो है वो तभी हम सीखेंगे जब हम यहाँ के सच्चे ब्रजवासियों को मिलेंगे। दुर्भाग्य से अभी बहुत कम हो गए ऐसे ब्रजवासी लोग, लेकिन अभी भी है। और उनके संग में जाकर उनके गुणों का जब अनुभव करेंगे आप, तो आपको ब्रज की सही महिमा आपको समझ में आएगी कि ब्रज क्या चीज़ है। ये ब्रज जो है ये आपके जीवन की बेड़ा पार करने की शक्ति रखता है। एक बार आपको गोद में ले लिया ब्रज ने, तो आपको सीधे भगवान के गोद में बिठाएगा वो, इतनी शक्ति है इस ब्रज में। तो यहाँ पर पहुँचना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा मत समझना कि आपने टिकट निकाल के ऐसे आप आ गए यहाँ पर। यह आपके कई जन्मों के पुण्यों का, कई जन्मों के वैष्णव सेवा का परिणाम है, जो भगवान आपको बार बार बुलाते हैं यहाँ पर। और उससे भी बड़ी कृपा भगवान की तब होगी जब वो आपको सेवा देंगे यहाँ पर। अभी तो आप दर्शन करने आ रहे हैं ना, सब लोग प्रार्थना करना कि केवल दर्शनार्थी बनकर अभी हम नहीं आना चाहते, हम अगली बार आएंगे तो आपकी सेवा करने के लिए आएंगे, आप हमें सेवा दीजिए। तो बड़े प्रेम से ऐसे प्रामाणिक भक्तों को भगवान सेवा भी देते हैं। जो भगवान को, भगवान के भक्तों की यहाँ पर सेवा करता है, उससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपकी सेवा से कोई ब्रजवासी प्रसन्न हो गया और वो स्माइल किया आपको देखकर, निश्चित समझना कि राधा और कृष्ण आपको देखकर स्मित हास्य कर रहे हैं विद ग्रेट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। ये ब्रजवासियों का सुख जो है वो हम लोगों को प्राप्त करना चाहिए हमारे माध्यम से। और भगवान इतने कृपालु है कि उन्होंने हमको बरसाने में सेवा दिया है, वृंदावन में सेवा दिया है। अभी हमारे रास गौरांग प्रभु कल आए थे, उन्होंने अनुभव किया ना थोड़ा सा कैसे लोग अपने भाव व्यक्त करते हैं। तो ये जो सेवा है ब्रज में आने के बाद जो प्राप्त होती है, जीवन की परमोच्च प्राप्ति है ये, इससे आगे कोई प्राप्ति नहीं है। अगर आपको राधा कृष्ण के प्रिय भक्तों की, अनन्य भक्तों की सेवा अगर छोटी सी प्राप्त होती है, ये हमारे जीवन की, जीवन में प्राप्त हुआ सबसे बड़ी कृपा है राधा रानी की हमारे ऊपर। व्हेन यू ऑब्टेन द सर्विस टू ब्रजवासीज, ब्रजभूमि भगवान से अभिन्न है, धाम और धामी अभिन्न है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम और भगवान की लीला और भगवान, ये 5 चीज़ें अभिन्न हैं, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। तो इसमें आप जब सेवा प्राप्त करोगे तो हमारा जीवन धन्य है। तो नंदगांव यहाँ पर शिवजी महाराज पर्वत बन के बैठे हैं। कैन यू इमेजिन पर्वत बनने का मतलब क्या होता है? पर्वत बनने पर लोग 1-2 सब करेंगे हमारे ऊपर, है ना, पैर चप्पल गंदे सब लेकर चलेंगे, पापी लोग, एवरीथिंग। पत्थर बनने के बाद में क्या होता है? पत्थर के ऊपर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और महादेव शिव शंभू यहाँ पर पत्थर बन के पड़े बैठे हुए हैं नंदीश्वर के रूप में, और अपना भाग्य समझते हैं। ये तो लीला है भगवान की, उनको साप वाप दिया अनुसुया के मुख से और पत्थर बने, लेकिन असली उनकी इच्छा क्या है कि ग्वाल बालों की, ब्रजवासियों की रज सर पे मिले। इसमें देवता लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। ब्रह्मा जी क्यों बने? ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के पहले सत्ययुग के समय 60,000 साल तपस्या किया, उन्होंने 60,000 ईयर्स व्रत किया पूरा। हमारा व्रत कैसे होता है? कुटू के आटे का लड्डू, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, कभी साबूदाना की मिठाई, क्या क्या हम लोग करके अपना व्रत निभाते हैं। बोलते धन्य हो गया हमारा, सफल हो गया व्रत, एकदम बढ़िया व्रत हो गया हमारा। वैसे नहीं, कठोर तपस्या मतलब क्या, पेड़ के पड़े हुए पत्ते खाते हैं, कभी कुछ भी के खाते हैं, खाली सांस लेते हैं। 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी दर्शन कुछ भी हुआ नहीं, कुछ कुछ सिग्नल ही नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ, अपने सेवा में लग गए, फिर जो काम है ना उनका क्रिएशन का उसमें लग गए। फिर सत्ययुग का अंत आया, तो सत्ययुग के अंत में 60,000 साल पुनः तपस्या किया, कितने हो गए, 120,000 साल हो गए। वो 120,000 साल के एंड में भगवान ने दर्शन दिया उसको, श्री हरि ने, बोला क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे आपके भक्तों की, गोपियों के रज चाहिए, आपके भक्तों की लीला को रज चाहिए मेरे सर पे, रज जाओ ब्रजभूमि में जाओ। बोले कहाँ जाओ ब्रजभूमि में, तो बहुत बड़ी है, बोले वृषभानुपुर जाओ, वृषभानुपुरम गत्वा, वहाँ जाओ और पर्वत बन जाओ। पर्वत बन गए वो, अभी हम लोग सब चढ़ते हैं उनके ऊपर, हमको दंडवत करना चाहिए, नीचे ही भाई माफ़ करना, आप ब्रह्मादेव हो, हमारे सारे चारों संप्रदाय के प्रमुख आचार्य आप हो, सबके निर्वाद करता आप हो, इतने महान व्यक्ति है वो, लेकिन वो पत्थर बने हुए हैं भक्तों की रज प्राप्त करने के लिए। और ऐसे पत्थर होने के बाद भी ये ना मक्खन की तरह मुलायम हुआ करते थे जब भगवान आते थे ना, तो एक तो कारण है भगवान को चरणों में मुलायमता होनी चाहिए इसलिए मुलायम होते थे, और दूसरा एक्सटसी के कारण वो ऐसे दुलायमान होते थे, दे बिकम वेरी प्रवाही, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ऐसे मुलायम हो जाते थे, जहाँ जहाँ भगवान जाएंगे वहाँ पर भाव से एकदम पिघलते थे वो, इसलिए कई चरण चिन्ह, फेटे के चिन्ह, इसके चिन्ह, मक्खन के चिन्ह, मटके के चिन्ह वहाँ पर पैदा हुए हैं। तो ऐसे भाव का अनुभव ब्रह्मा, शिव जी, गणेश, महेश जी, विष्णु जी करते हैं, भगवान के सान्निध्य में आते ही वो दुलायमान हो जाते हैं, एकदम ऐसे मुलायम हो जाते हैं भगवान को सुख देने के लिए, और अति आनंद का अनुभव करते हैं, एक्सटसी का अनुभव करते हैं, परमानंद का अनुभव करते हैं। ये मतलब है पहाड़ होना, लेकिन पहाड़ होने का एक भौतिक अर्थ भी है कि बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, सब कष्ट सहन करना पड़ता है। तो ये शिवजी महाराज वहाँ पर नंदीश्वर के रूप में बैठे हैं। देव मीड नाम के राजा थे, उनकी दो अनेक पत्नियाँ थी, लेकिन दो, एक शत्राणी पत्नी थी, एक वैश्य पत्नी थी। शत्राणी पत्नी से उनको शूरसेन नाम के क्षत्रिय प्राप्त हुए, और वैश्य पत्नी से उनको परजन्य नाम के वैश्य प्राप्त हुए, ब्रजवासी। तो ये परजन्य महाराज थे, वो सद्गुणों का आगार थे, हर प्रकार के सद्गुण उनके अंदर थे, धर्मशील थे वो। उन्होंने नंदगांव में तपस्या किया है भगवान की प्राप्ति के लिए, बहुत कठोर तपस्या किया है, और उनको वरदान प्राप्त हुआ फिर कि आपको 5 पुत्र होंगे, और उस पर एक पुत्र के गर्भ, एक पुत्र के माध्यम से स्वयं भगवान जन्म लेंगे। तो वो परजन्य बाबा को, वैसे वो पहले महावन में रहते थे परजन्य, लेकिन महावन में केशी के भय से वो नंदगांव गए, दोनों उनके स्थान है, लेकिन पहले महावन में थे, वहाँ से वो नंदगांव में आ गए, वहाँ पर तपस्या किया, फिर उनको 5 पुत्र प्राप्त हुए। कौन कौन? उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन, 2 छोटे 2 बड़े, ये बीच वाले। तो परजन्य जो थे वो जब भी बच्चे बड़े हो गए, तो उन्होंने बड़े अपने पुत्र को राजा बना दिया नंदगांव का। लेकिन देखिए, बड़े पुत्र ने, उपनंद ने जब ये राज्य स्वीकार किया, तो बड़े ही प्रेम से नंद बाबा को दे दिया वो, नंद को ये राज्य दे दिया, ये जानते हुए कि हमारे सबसे सर्वोत्कृष्ट, सर्वगुण संपन्न ये नंद है। कोई कभी भी अपने को प्राप्त किया हुआ प्रॉपर्टी, वसीयत, धरोहर कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन एक बार ब्रज में हो सकता है, भक्तों के बीच में हो सकता है। तो अपने को प्राप्त हुआ राज्य जो है उसने अपने बीच वाले भाई को दिया, वो भी को तैयार नहीं थे लेने के लिए, अच्छा है आप दे रहे हो, नहीं नहीं नहीं, लेकिन उसको मजबूर किया लेने के लिए। फिर हर एक पांचों में से हर एक व्यक्ति को 2-2 बालक हुए, और वो 2-2 बालक 4 हो गए ना, तो 8 थे ना बालक, वो भगवान के अष्ट सखा बने जो नंदगांव में निवास करते हैं। और गर्ग संहिता में लिखा है कि एक दूसरे के प्रेम की वजह से ये अपने अपने गांव में नहीं बसे, ये नंदगांव में सब लोग रहते थे, और उनके 8 बालक जो है नंद बाबा को कृष्ण बलराम प्राप्त हुए, बाकी 4 को 8 हुए, तो ये साथ में रहा करते थे। तो ये अष्ट सखा और कृष्ण बलराम सब नंदगांव के निवासी हैं। और ये भगवान के सखा बने हुए हैं। और भगवान का वात्सल्य और साख्य, ये दोनों लीला प्रधान हैं नंदगांव में। कुछ सखा भगवान के थोड़े से उम्र में बड़े हैं, कुछ समवयस्क हैं और कुछ छोटे हैं। समवयस्क वयस्कों में श्रीदामा जी आते हैं, जो राधा रानी के बड़े भाई हैं, भगवान के सबसे प्रिय सखा है। नारद मुनि का उनको वरदान प्राप्त हुआ था कि आप कृष्ण के सबसे प्रिय सखा बनोगे, तो श्रीदामा जी प्रधान सखा हैं। लेकिन बड़े भी हैं उम्र में, मंडली भद्र और बहुत सारे भद्र ऐसे उनके सखा हैं। वो तलवार लेके गदा लेके जाते हैं भगवान की सुरक्षा करने के लिए। जब भी भगवान जाते हैं गाय चराने के लिए, तो ये बड़े उम्र वाले जो सखा हैं वो हमेशा ऐसे गार्ड के रूप में रहते हैं, वात्सल्य भाव में। और समवयस्क जो हैं फिर वो चिना झपटी, डब्बा छीनना, कभी कुछ बाल छीनना, कभी कूदना, कभी मजाक करना, कभी कुश्ती खेलना, भगवान को हरा देना, भगवान के कंधे पे चढ़ना, ये सब काम जो है समवयस्क करते हैं। छोटे उम्र के जो सखा होते हैं भगवान के, वो सुबह जब बंसी बजती है ना, सुबह जब उठते हैं ना भगवान, सबसे पहले बंसी बजाते हैं। बंसी की आवाज़ में सारे गोप उठ जाते हैं और समवयस्क जो तैयारी करने लगते हैं तुरंत अभी जाने के लिए, और जो छोटे वाले हैं वो तुरंत भाग के नंद भवन में आते हैं और बड़ी आशा वाले मुख से गेट पे खड़े हो जाते हैं। बड़े कॉल्ड एंटिसिपेटरी मूड में, ऐसे कुछ मिलेगा अभी सेवा, तो उनके वो चेहरे को देखकर यशोदा माई बुलाते आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। तो कोई फिर शंख पकड़ता है, कोई थाली पकड़ता है, कोई कपड़ा पकड़ता है, कोई अलंकार पकड़ता है, कोई घुंघरू पकड़ता है, मतलब यशोदा माई को वो सहायता करते हैं कृष्ण को सेवा करने के लिए, असिस्टेंस करते हैं। सखियाँ भी रहती हैं, फिर भगवान वहाँ से उठकर फिर तैयार होकर आते हैं और गाय चराने चले जाते हैं। तो इस सखाओं का जो अद्भुत लीला है वो नंदगांव का सार है एक्चुअली, सखाओं का आनंद जो है। तो अभी आप कहाँ कहाँ गए मुझे पता नहीं, तो वहाँ पर एक स्थान है टेरकदम्ब, तो टेरकदम्ब में आप गए ना, बहुत अद्भुत स्थान है वो, बहुत सुंदर। उधर कल्प वृक्ष है टेरकदम्ब, टेर यानी कि पुकारना, कदम्ब यानी कदम, तो कल्प वृक्ष वहाँ विराजमान है। हम लोग जब 30 साल पहले आए थे तो बहुत ही आकाश में ऊँचा था वो, तो उस पर भगवान सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बंसी बजाते हैं 6th note। हाँ, और वो छठवीं नोट में जब बजाते हैं तो वो जो उनके अनंत गायें हैं, लाखों 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 गायें हैं, केवल कृष्ण की नहीं है, सारे ग्वालकालों भी उनकी भी गाय है ना, कृष्ण की एक नंबर गाय है, बाकी सबकी अपनी अपनी नंबर है गाय की। सभी गायों के 108 झुंड है, काली, धुमरी, पीली, केसरी, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, और ब्राउन विथ वाइट डॉट, ब्राउन विथ ब्लैक विथ वाइट डॉट्स, ऐसे अलग प्रकार के। किसी के सर पे वाइट डॉट है वो तिलकिनी नाम के रूप में जाती है, किसी का मुख जो है मृदंग की तरह है तो मृदंगिनी बोलते हैं उसको, तिलकिनी मृदंगिनी, ऐसे कई 108 झुंड है उनके, अलग अलग प्रकार के एकदम स्पेशल गा काउज। और वो सबको लेकर जब जाते हैं वो, तो लास्ट में जब आते हैं ना तो वो सारी गाय यहाँ वहाँ बिखरी रहती है, वहाँ ऊपर जाते हैं और बंसी बजाते हैं। और जब बंसी बजती है, आपका नाम क्या है, तो आपको शिव सुनाई पड़ेगा उसमें, आपको ब्रज बिहारी सुनाई पड़ेगा, आपको सचिनंदन सुनाई पड़ेगा, आपको राजेंद्र कृष्ण सुनाई पड़ेगा, आपको राज गौरांग सुनाई पड़ेगा। बंसी की एक ही धुन बज रही है लेकिन हर एक व्यक्ति को अपना नाम सुनाई पड़ेगा। और वो सारी गायें जो है अपना नाम, हर एक को नाम है, वो कान ऊपर करके, अपनी पूंछ ऊपर करके ऐसे भाग के आती है और वो पेड़ के नीचे आके ऐसे आ करके खड़ी हो जाती है उस मुरली की मधुर तान सुनते हुए। फिर कुछ गाय ऐसे होती ना अटेंशन सीकिंग होती है, वो सुनकर भी अनसुना कर देती है, तो वो जानते हैं ना कि वो ऐसे जानबूझ कर, वो ऐसा लग रहा है कि सुना ही नहीं पड़ा, ऐसे ही घास खाती रहती है। सभी इकट्ठा होकर ऐसे इकट्ठा होती है, फिर उनको लाने के लिए खुद उतर के जाते हैं और पीठ पे थपथपा कर पकड़ के लेके आते हैं और फिर वापस बंसी बजाते हुए वहाँ से लेकर नंद भवन के ओर जाते हैं। ये वहाँ की लीला है टेरकदम्ब, बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन भगवान को बड़ी गायों का सेवा दिया गया था, कार्तिक वद्य अष्टमी के दिन शांडिल्य मुनि के द्वारा पूरी विधिवत भगवान को बड़े गायों का सेवा सौंपा दिया था। तो बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कथाएं उसकी। एक कथा ऐसी है कि भगवान जब 5 साल के हो गए तो भगवान ने अपने मैया को कहा, अभी मैं 5 साल का हो गया हूँ, मुझे छोटी छोटी गायों को लेकर जाने को अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मेरे सखा मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम बड़े गाय को देखने के योग्य ही नहीं हो, मैया बाबा को तुम पर विश्वास ही नहीं है, कि तुम कुछ अच्छा काम कर सकते हो। इसलिए वो छोटे छोटे बच्चों को ही आपको दे देते हैं और उसका लिमिट होता है। क्या मालूम है क्या लिमिट होता है? नंद भवन पे ऊपर गए ना, नंद भवन पे एक ऊंचा सबसे एक स्थान है जहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, हाँ वहाँ पर दौंडी लगाते हैं कभी, तो वहाँ पर अगर नंद बाबा यशोदा गए तो वो किसी भी दिशा में देखेंगे ना तो जहाँ तक उनको दिखाई पड़ेगा वहीं तक जाना है, जहाँ तक उनकी नज़र पहुँचेगी वो आपका लिमिट है, मतलब ज़्यादा पास नहीं है, इधर इधर वो खदीर वन है, इधर उर्दा कुंड है, ऐसा थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा जाना नहीं है। मतलब एक तो आप योग्य नहीं हो बड़े गाय को देखने के लिए, और छोटे गाय को लेके पास में ही भेजते, आपको दूर भेजने का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर वो बोले ऐसा कैसे, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मुझे 5 साल पूरे हो गए, मैं कुमार अवस्था खत्म हो गया, पौगंड अवस्था में जा रहा हूँ, अभी मुझे बड़े गाय देना चाहिए। वो सबको लेकर गौशाला में गए, बड़ी बड़ी गाय, जो बड़ी बड़ी गाय होती है ना, बड़े सिंग वाली, वहाँ पर गए, और जैसे ही वो गए तो गाय को हाथ लगाया, सारी गाय बड़ी बड़ी उसके पास में आई, उनको चाटने लगी। तो कन्हैया बोले देखो मैया, देखो सब मुझे चाहती है, दिस इज अ प्रूफ। ऐसा नहीं कि वो मुझे चाहती नहीं है, मैं योग्य नहीं हूँ तो मुझे वो देख नहीं रही, अनदेखी कर रही है। तो फिर घर में क्या डिस्कस करते हो, यहाँ भी देना चाहिए। फिर शांडिल्य मुनि को बुलाते हैं, फिर वो गोपाष्टमी दिन विधि करते हैं, तो मैया पूछते हैं फिर छोटी गायों का क्या होगा, अभी उनको कौन चराएगा? तो बलराम भैया चलाएगा। लेकिन सत्य ये है कि गोपाष्टमी के बाद में छोटी गाय भी चली और बड़ी गाय भी चली और बकरियां भी चली और भैंस भी चली और सब चले उनके साथ में, एवरीबडी इवेंट, नोबडी कुड लीव हिज कंपनी, है ना। इतने दिन बच्चे बछड़ी बच्चियां जो है वो चलती थी, भाई बड़ी गाय जाने लगे तो बच्चियां क्या करेंगी, थोड़ी छोड़ेंगी, वो भी जा रही है उनके पीछे। और ये गौचारण का लीला जो है इतना वर्णन सुंदर भागवत में दिया, उसका अद्भुत आनंद भगवान ने अपने ग्वाल बालकों को दिया है। सुखदेव जी बार बार प्रश्न करते हैं कि क्या भाग्य है इन बालकों का, जैसे इमेजिन क्या किया है उन्होंने, साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम गोलोकेश्वर श्री कृष्ण के साथ में इतना अंग संग प्राप्त हो रहा है उनका, वो जानती भी नहीं है कौन है ये भगवान है कि कौन है, वो कंधे पे चढ़ते हैं, हाँ उनको पनिशमेंट देते हैं, उनके कंधे पे चढ़ के राउंड लेते हैं वो। क्या पुण्य किया होगा, ऐसे सुखदेव जी बार बार प्रश्न करते हैं, इतना अद्भुत भाग्य है उनका। तो ये गौचारण लीला जो है गोपाष्टमी के दिन वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होता है, ठेर कदम ये नंदगांव के वासियों के लिए बहुत बड़ा स्थान है, वहीं पर रूप गोस्वामी ने निवास किया था। और वहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने जब उनका मंदिर यहाँ बनने का काम शुरू हुआ तभी वो यहाँ पर अपने गोविंद जी को किसी के हाथ देकर वो वहाँ पर जाके एकांत में भजन करते थे। उन्होंने फिर भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत दग्ध माधव ललित माधव बहुत सारे ग्रंथों का वहाँ पर लेखन किया उन्होंने। आज भी वो एक रमणीय स्थान है, वहाँ पर जो सीन है, आप गए थे ना आज, वहाँ पर जो सीन है ना, मुंबई में करोड़ों रुपये खर्च करके आप खड़ा नहीं कर सकते, वो मंडप जो बना हुआ है ना वहाँ पर पीलू के पेड़ से बना हुआ है नेचुरल, और वहाँ बैठकर एक कथा करने में इतना आनंद आता है सुनने में और करने में बहुत ज़्यादा। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान वहाँ पर है आशेश्वर महादेव, वहाँ पर गए थे आप? आशेश्वर महादेव का महात्म्य ऐसा है कि जब भगवान का जन्म हुआ वो गोकुल में हुआ ना, तो गोकुल में फिर वो पुतना शक्टासुर तृणाव्रत इनका उनका रोज का चक्कर चालू था। भागवत जी में तो केवल कुछ ही बड़े बड़े राक्षस का वर्णन किया है, क्योंकि सुखदेव जी के पास इतना समय नहीं था कि सारा विस्तार में बताया, वो समय किधर है उनको, तो उन्होंने टॉपिक डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा बताया। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि हर रोज एक राक्षस आया करता है, एवरी सिंगल डे वन डेमन विल कम, और हर रोज भगवान एक राक्षस को मार देते, इट्स नॉट इजी थिंग ना टू हैंडल एवरी डे वन डेमन, इट्स नॉट इजी। और ये देवताओं का भी षड्यंत्र था, क्योंकि भगवान अगर अपने बालकों के साथ में लीला करने में इतने मग्न हो गए तो भोजन भी नहीं खाते थे, तो राक्षस के वजह से भेजने की वजह से उनकी एक मग्नता में भंग होता था, और राक्षस को मारने के बाद सब लोग जमुना जी में स्नान करते थे फिर भोजन करते थे, दिस इज एवरी डेज पास्ट टाइम। तो फिर ये रोज के आतंक की वजह से भी कुछ साधारण राक्षस नहीं है, 12 मील के राक्षसी रणावर्त आकाश में लेके गया, हाँ शक्टासुर तो भयंकर गाढ़ा बनकर आया, ऐसे अद्भुत मतलब कुछ सोच सकते नहीं ऐसे। अभी कल बोलेंगे माइक्रोफोन भी राक्षस बनकर आएगा तो हम बोलने लगेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे अभी कोई सोच सकता है क्या कि गाड़ी आई, गाड़ी वो गाड़ी राक्षस था, इमेजिन, हवा आई घूमते घूमते, वो हवा राक्षस था। बड़ी अद्भुत तरीके से राक्षस लोग आते थे वहाँ पर, भयंकर रूप धारण करके। तो बोलते हैं कि यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जस्ट अक्रॉस यमुना, ये कंस की नगरी है, बहुत पास में है सब ये, यहाँ से हमको जाना चाहिए। तो वहाँ से वो नंदगांव चले गए। विश्वान बाबा उनके मित्र थे, वो भी रावल में आए थे पुत्र प्राप्ति के लिए, कन्या प्राप्ति के लिए। उनको कन्या प्राप्ति हुई, इनको पुत्र प्राप्ति हुई, इसलिए वो सब लोग मिलकर साथ में चल बसे वहाँ से। और वो वृषभानु बाबा बरसाना में बसे वापस, दोबारा ये नंदगांव में जाके बसे। लेकिन जब जन्म हुआ था ना इनका गोकुल में, जब नंदोत्सव मनाया गया था, तो सभी देवता आए थे भेष बदलकर। बहुत सुंदर वर्णन है उसका, कितने सारे देवता और उनकी पत्नियाँ आई थी वहाँ पर। कोई 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 बनी धाड़िन, कोई बली मालिन, कोई फूल बेचने वाली, कोई बंगन कंगन बेचने वाली, कोई क्या क्या पुष्प बेचने वाली, क्या क्या करने वाली, झाड़ू मारने वाली, कोई अत्तर बेचने वाली, कोई ये करने वाली, कोई वो करने वाली, कोई ज्योतिषी, कोई ब्रह्मचारी, ऐसे करके वो कितने सारे लोग आए थे वहाँ पर। सबको देख रही थी यशोदा मैया, लेकिन कैसे पूछेंगे आप कौन हो, कहाँ से आए हो। देख रहे हैं कि ये सब ब्रजवासी नहीं है, ये सब हमारे यहाँ पर रहने वाले लोग नहीं है, अद्भुत लोग है ये सब, अलग लोग हैं। लेकिन वो इतने उत्सव के बीच में पूछ नहीं पाई वो। सची माता का भी यही स्थिति था, जब वो नंद योगपीठ पर उनको सब लोग मिलने आए, देवता सब जान रहे थे कि सब अद्भुत लोग हैं, लेकिन वो किसी को पूछ नहीं पाए कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका स्कूपन है क्या प्रसाद का, यहाँ कैसे आ गया। शादी में होता है ना ऐसे, कुछ सज्जज के लोग आते हैं, मालूम है ना आपको, तो सज्जज के ऐसे लोग आ जाते हैं 15-20 लोग, वो कॉन्ट्रैक्टर के लोग ही होते हैं, बोलते आ जाओ, प्लेट की गिनती बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बहुत प्रश्न उत्पन्न हुए, लेकिन पूछ नहीं पाए वो, और वो चले भी गए, अदृश्य भी हो गए। लेकिन शंकर जी महाराज जो है वो बाद में नंदगांव में आए, ये अभिलाषा करके कि ठाकुर जी के दर्शन होंगे, मेरे परम आराध्य प्रेम में भगवान के दर्शन होंगे। तो ऋषि का बेश बनाकर आए, तो आए तो मैया आई और थोड़े धान्य थोड़े मोती सब लेकर आई और दे दिया उनको। बोले तो नहीं, हमको, हम तो चावल और उसके भूखे नहीं हैं, हमको लाला के दर्शन करने हैं। तो एकदम गंभीर हो गई वो, हाँ अभी ब्रज में ऐसा कल्चर है, कोई भी भिक्षा मांगेगा ना, गरीब से गरीब गृहस्थ भी जो है दे देगा उसको, ये और एक ब्रज का कल्चर है। हम लोग ने भी महाराज के हाथ में यात्रा की थी 1989 में, तो हम सब लोगों ने, डॉक्टर हम सब लोगों ने जाकर झोपड़ी में भिक्षा मांगी थी, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं था कि भोजन कहाँ करना है, लंच कहाँ होगा, डिनर कहाँ होगा। हमारे सभी पेट में कौवे काटने लगे, तो हम लोग बोले महाराज अभी थोड़ा सा भूख लग रही है, थोड़ा कुछ व्यवस्था तो नहीं है। तो हम लोग बोले महाराज भिक्षा मांगे, मांगो। तो हम लोग सब लोग गए, झोपड़ी की लाइन थी, बड़े मट्टी की झोपड़ियाँ थी, एक एक करके सब लोग झोपड़ी में गए। अरे थप्पी थप्पी रहा है, चावल दिया हमको, क्या बोलते हैं, रोटी दिया उन्होंने, अचार दिया, सब्जी दिया, और सब लोग हम लोग थप्पी थप्पी लेकर अक्षय वट के नीचे आए, अक्षय वट के नीचे बैठ गए हम लोग, सब लोग ऐसे फर्स्ट क्लास बैठ गए। महाराज ने हमको सबको रोटी बाटी और सब बाटे, हमने बैठ के वहाँ भोजन किया, बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ का कल्चर है। तो अभी भी मुझे वो सीन मेरे आँखों के सामने, वो सफ़ेद रंग की मट्टी की झोपड़ियाँ और अक्षय वट, और हम लोग बैठ के वहाँ पर अच्छा भोजन किया था भिक्षा मांग कर। अरे भूख इतनी लगी थी, प्रचुर मात्रा में इतना भोजन था। बाद में हमने भी रोटी बाटी लोगों को। तो ऐसे ही माता ने बड़े प्रेम से श्रद्धा से साधु को दक्ष मतलब भिक्षा देने का प्रयास किया। और जैसे ही बोला साधु ने कि हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको लाला के दर्शन चाहिए, तो गंभीर हो गई वो, शी बिकेम वेरी सीरियस एंड ऑल्सो एंग्री। बोले आप सब लोग बहुत चतुर लोग हो, सब कंस के लोग हो आप, कभी औरत बनकर आते हो, कभी हवा बनकर आते हो, कभी गाड़ी बनकर आते हो, कभी ये बनकर आते हो, कभी बैल बनकर आते हो, कभी ये बनकर आते हो, आज ऋषि बनकर आए हो, ये तुम्हारी हिम्मत, क्या साधु बनकर आए हो हमें उल्लू बनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं फंसने वाली, जाओ लेना हो तो ले, चले जाओ यहाँ से, कोई लाला वाला दर्शन नहीं करेंगे हम आपको। तो आप सोच सकते शिव जी पर क्या बीती होगी, वो तो राक्षस नहीं थे, राक्षस को ऐसा बोलते थे ठीक था, कि आई डायग्नोज यू, योर डॉक्टर, योर डीमन। शिव जी महाराज बेचारे, अरे मैं बड़ी दूर से आया हूँ, क्या बोलेंगे, कौन से पर्वत से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, बोल रहे हैं मैया ऐसा मत करना, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं कंस का आदमी नहीं हूँ, कृपा करके मुझे आप दर्शन दिला दो। तो जैसे वो गिड़गिड़ा रहे, उसे उसको और डाउट क्लियर हो रहा है कि ये राक्षस ही है, क्योंकि वो हर किस कीमत पर लाला का दर्शन करना चाहेगा और लाला को छीन के उसको कुछ करेगा, उसको नहीं मानी। आखिर में दरवाजा धाड़ करके बंद कर दिया, चले जाओ यहाँ से। तो शिव महाराज बहुत, शिव जी महाराज बहुत दुखी हो गए, बोले दर्शन के बाद तो जाएंगे नहीं, तो वहीं जाके बैठ गए। वो आशेश्वर वन है वहाँ पर, हाँ उनके नाम पे वन बन गया। वो वन में जाकर बैठ गए और रो रो के पुकारने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रो रो के पुकारने लगे। अभी ठाकुर जी तो छोटे से बालक है ना वो, लेकिन ठाकुर जी बालक होने पर क्या होता है, वो तो अंतर्यामी है सब, परम भगवान तो इतने से रूप में भी परम भगवान है। वो जानते हैं उनका भक्त रो रहा है, पुकार रहा है उनको। तो बालक के पास क्या शस्त्र होता है, सबसे पावरफुल शस्त्र, तो प्रधानमंत्री भी उसका पिताजी होगा ना, उसके सामने प्रधानमंत्री भी डिफीट हो जाएगा। अरे चर्चिल भी डिफीट हो गया था, मालूम है ना आपको, घोड़ा बना था घोड़ा, मिस्टर चर्चिल, विंस्टन चर्चिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैड बिकम हॉर्स फॉर हिज ग्रैंडसन। तो कौन सा अस्त्र होता है बालक के पास जिससे सारे माता पिता डिफीट हो जाते, वो है रोना। तो बालक ने अपना अस्त्र निकाला और रोना शुरू कर दिया। फिर मैया ने उसको खिलौना दिया, फिर मक्खन दिया, फिर ये दिया, फिर वो दिया, सब ठुकरा दिया उसने, खुद भी गोद में लिया, प्रेम किया, चुम्मा लिया, फिर भी जोर से रो रहा है, जितना और कुछ कर रहे हैं उतना जोर से रो रहा है। अभी वो मैया डर गई, सब बड़ी सखियों को बुलाया उसने, प्रभावती को बुलाया, फिर पूर्णमासी को बुलाया, पूर्णमासी तो सबकी गुरु है ना, वो सब बड़े गोपियों की गुरु जी गुरु है वो, गुरु माता, उसको बुलाया। सब आके कोशिश कर रहे हैं कि बालक कभी देखो ब्रज में कैसा है, श्री कृष्ण भगवान सबके केंद्र स्थान में, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ फोकस, सब कुछ वही है वो, उनके सिवा उनका कुछ होता नहीं लाइफ में। रो रहा है मतलब परेशान हो गए, सब लोग जमा हो गए नंद भवन में, सोच रहे क्या करे जाए, ये करे वो करे, हवा दे रहे उसको, रोते जा रहा है रोते जा रहा है। आप में से किसी लोगों ने अनुभव किया है कभी रात को बालक रोता है और वो रोते को रुकता ही नहीं है तो कैसे हालत खराब हो जाती है, टू मच डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन, हाँ जोक नहीं है वो, इट्स वेरी सीरियस सिचुएशन। और अब ये तो हमारे बालकों के बारे में हम लोग होते तो इतना गंभीर हो जाते, तो ये तो कृष्ण भगवान है, सबके आंखों का तारा है वो, हाँ नैनों का तारा, गोविंद बोलो रे। तो फिर पूर्णमासी कहती है, अरे वो जो महाराज आए थे ना बाबा, बड़े सिद्ध बाबा है वो, बड़े दूर से आए थे, आपने उसको ठुकरा दिया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उनकी कृपा से ये रोना बंद कर सकता है, ये बाबाओं के पास बड़ी शक्ति होती है, इनका आशीर्वाद से क्या नहीं होता है, क्यों ऐसा बोल रही हो? उसके पति है ना वो, पूर्णमासी देवी पार्वती का अवतार है, उनको सब पता है कि आए थे हमारे पति भेष बदल कर, उनको ठुकराया गया, क्या बोलेगी वो, हाँ यशोदा बा के सामने क्या बोल सकते हैं। लेकिन अभी मौका है अच्छा, वो जानती है रो रहे हैं वहाँ पर, वो बोलते उनको बुला लो। तो देखिए आप यशोदा माता का कॉन्शियसनेस देखिए, जिसको एकदम बिंदास भगा दिया उसको, उसी को अभी सखियां भेज रही है आरती का पूजन का सामान लेके प्रार्थना करने के, जाओ उनको बुला ले आओ। क्या फोकस है उनका? कृष्ण। जब कृष्ण के लिए भय का कुछ डर है कि कुछ होगा उनके लिए, तो उनको डर लगता नहीं कि वो महादेव हो, ऋषि हो, कोई वो गेट लॉस्ट, और वो भी उसकी सेवा में कुछ जरूरी है उसी को वापस बुला सकते हो। एकदम विरुद्ध एक्टिविटी ना, एक बार ठुकरा देना उसको अपमानित करके, एक बार सम्मानित करके बुला लेना, आ जाओ भाई प्लीज कुछ करो हमारे लिए। उनको कोई संकोच नहीं है, वो सोचती नहीं अरे कैसे उनको बुलाऊंगी, अभी तो मैंने उनको अपमान करके भेजा था, नो प्रॉब्लम, एनीथिंग फॉर कृष्णा, कुछ भी कर सकते हैं। तो भेजा उनको, बुला लिया, और फिर लाला को लेकर आए और जोर से रो रहा है, जैसे ही चरण स्पर्श किया रोना बंद हो गया। तो ऐसे ठाकुर जी का चरण स्पर्श जो है शिवजी महाराज ने वहाँ पर किया। तब मैया क्या बोलती है, अरे बाबा अभी तुम यहीं रहो, पास ही रहो, जब जब मेरा लाला रोवे तब तक दर्शन दीजो। अभी आगे भी मतलब अभी एक बार नहीं है हमारा ये, अभी आप यहीं बसो और जब जब मेरा बच्चा रोएगा तब तब आया करो और उसको शांत किया करो, और मैं भी वादा करती हूँ आप यहीं रहो। तो उनको उन्होंने नंदीश्वर के रूप में वहाँ पर स्थान दिया है अपने घर के पास में, और जब बोलते कि जो भी मैं इनको खिलाऊंगी वो सब आपको दूंगी महाप्रसाद उसका। तो आज भी नंद बाबा में रिवाज है, जो नंदलाला को भोग लगता है वो महाप्रसाद शिवजी को पहला अर्पण किया जाता है, जो अभिषेक होता है उनका वो जल पहले शिवजी को चढ़ाते हैं। तो शिवजी ने वहाँ पर भगवान के लिए आशा कैसे करनी चाहिए, भगवान को कैसे चाहना चाहिए, हाँ भगवान को विवश किया उन्होंने ना, अपने रोने से भगवान को विवश किया दर्शन देने के लिए, तो भगवान के लिए कैसे आशा करनी चाहिए, इसका एक उदाहरण शिवजी महाराज ने वहाँ पर आशेश्वर भवन में स्थापन किया है। फिर वहाँ पर एक स्थान है, हम सब लोग आशेश्वर महादेव को यहाँ से बैठ के प्रणाम करेंगे, नंदीश्वर महादेव को प्रणाम करेंगे। भगवान के परम भक्त है वो, वैष्णवाना नथा शंभू, श्रेष्ठ वैष्णव है वो। फिर वहाँ पर एक और स्थान है पावन सरोवर, वो नंद महाराज के बहुत सारे सरोवर थे, क्योंकि नंद महाराज राजा थे ना, नंद गांव के राजा है। परजन्य महाराज के तपस्या से पुनित होने पर भी उस गांव को नाव नंद महाराज के प्रति दिया गया है, इतने नंद महाराज महान थे। तो उनके कई कुंड थे, तो वो कुंड में कई ऐसे घाट भी थे, तो सबसे बड़ा कुंड था नंद सरोवर, उसमें यशोदा घाट भी था, उनका एक लेडीज लोगों का प्राइवेट एरिया था, रोज वहाँ पर स्नान करते थे वो। जब तक कृष्ण छोटे थे ना, तब तक वो पावन सरोवर मतलब नंद सरोवर में स्नान किया करते थे। गोपाल चंद्र ने सुंदर वर्णन दिया उनका, जब वो 5 साल के हो गए ना तो वो शर्माने लगे, जब मैया कपड़े उतारने का प्रयास करती थी तो वो शर्माते थे, तो यशोदा माई अपने सखियों को बताती थी, अभी ना ये कृष्ण जो है ना कन्हैया, वो अभी मुझे स्नान करने के लिए बहुत संकोच करता है, तो बोलता है अभी बड़ा हो गया वो, तो मांग करता है कि अभी मैं आपके साथ स्नान नहीं करूँगा, मेरे लिए अलग कुंड बनाओ। तो नंद महाराज ने अलग कुंड बनाया, कृष्ण कुंड, वो भी वहाँ पर है, आपने देखा आशीष्वर के रास्ते पर राइट साइड में नित्य गोपाल का मंदिर है, उसके आगे कृष्ण कुंड है। जब 5 साल से बड़े हो गए तो फिर कृष्ण बलराम सेपरेट जाकर स्नान करके आते थे और फिर वस्त्र उनसे पहनाते थे। तो वो नंद सरोवर में स्वयं एक दिन क्या हुआ कि यशोदा माई जो है ना कुछ ड्राई प्रसाद बना रही थी, इसको बोलते हैं मटरी, मटरी मालूम है आपको, वो सफ़र में यूज़ आती है वो, उसमें जीरा वरा मैदा वगैरह होता है, फ्राई करते हैं उसको। तो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग, ये क्या बन रहे हैं, बोलते ये मटरी बनता है, ये हम लोग जब यात्रा जाते हैं ना यात्रा में तब बनाते हैं इसको। लोग कौन यात्रा जा रहे हैं, बोलते नंद बाबा जो है वो त्रिवेणी जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, सब बड़े बड़े बाल बाल को लेकर जा रहे हैं वो। तो त्रिवेणी में क्या होता है, तो 3 नदियों का संगम है, वहाँ पर स्नान करने से बड़ा भाग्य प्राप्त होता है। तो वो बाबा से मिलते हैं, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप, बोले मैं त्रिवेणी जा रहा हूँ, मत जाना, नहीं जाना ही पड़ेगा, एक काम करना आज मत जाना कल जाना, क्योंकि कल अक्षय तृतीया का दिन है, अच्छा दिन है, कुछ भी अच्छा काम करने के लिए कल का दिन अच्छा है। तो बोले बात तो पते की है, अच्छी है, कोई बात नहीं, हम एक दिन में क्या होता है, कल जाएंगे। तो उस दिन रात नंदगांव में रुके सब लोग, और हमेशा की तरह नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षय तृतीया के सुबह वो अपने कुंड में स्नान करने गए। तो बहुत समय जब होता है ना सूर्य अर्ली मॉर्निंग का, तो बहुत अंधेरा होता है ना उसमें, तो ये क्या है अंधेरे के समय पूरा प्रकाश नंद सरोवर में, तो कहाँ से आ रहा है, देखते तो एक महाराज बड़े मुकुट वुकुट धारण करके राज वस्त्र पहन, राज अलंकार पहन के सब कुछ पहन के खड़े वहाँ पर, और वो क्या कर रहे हैं, वो अद्भुत चीज़ कर रहे हैं, वो नंद सरोवर में स्नान कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और बाहर के किनारे की रज में लोटपोट हो रहे हैं, सब मट्टी लगा के फिर वापस कुंड में, फिर वापस बाहर, फिर वापस अंदर, वापस बाहर। तो ये तो नंदगांव के तो नहीं है, ये बाहर से आए हैं। पास जाते बोलते महाराज आप कौन हो, बोलते मैं प्रयागराज हूँ। अच्छा प्रयागराज स्वयं यहाँ पर, दंडवत प्रणाम करते महाराज दंडवत, क्योंकि मन में मालूम है ना क्या इनके पास जाना है मुझे, इतनी तैयारी मटरी वटरी किसकी क्यों हो रही है, इनके पास जाने के लिए हो रही है स्नान करने के लिए। बोले महाराज धन्यवाद आप आए हमारे पास, हमारा भाग्य है, लेकिन ये कर क्या रहे आप, ये ऐसे कुंड में स्नान फिर मट्टी में लोटपोट कुंड में स्नान, ये क्या राज है हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ के रज में इतना महात्म्य है कि मेरा जो यहाँ का आपका जो कुंड है और इस कुंड की जो ब्रज की रज है इसका इतना महात्म्य है कि साल भर हम लोग रहते अपनी अपनी जगह पर, सब पापी लोग आके स्नान करते हैं अपना पाप छोड़ते हैं, हम लोग हमारा तेज नष्ट होकर हम काले कलूटे हो जाते हैं, तो हम एक दिन कैजुअल लीव लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन, और आपके यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, और क्या बताऊँ जब आते हैं तो काले काले होते हैं, जब स्नान करते हैं बार बार तो पूरा दोबारा तेज वापस प्राप्त होता है। तो बोलते हैं अरे इनके पास जाने की जरूरत क्या है, अभी यही हमारे पास में आते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा होते होते दंडवत करते देखते तो उधर के किनारे में बहुत सारी देवियाँ स्नान कर रही है, वो भी वही कर रही है, तो पूरा पार करते वहाँ पहुँचते, देवी हो आप कौन हो, तो बोलते हम गंगा है, हम जमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी है, भीमा है, तापी है, ये सारी देवी देवियों का नाम, हम सब नदियाँ हैं, हमारे अंदर सब लोग पाप लोग आते हैं स्नान करते हैं, हमारा तेज नष्ट होता है, तो हम भी साल में एक बार एक दिन छुट्टी निकाल कर यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं और शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, हमारा पाप धुल जाता है, फिर हम दोबारा अपनी सेवा के लिए अपने अपने स्थान पर चले जाते। तो नंद महाराज फिर इलाहाबाद का टिकट कैंसिल कर देते, रिफंड भी नहीं चाहिए, हु केयर्स। हाँ, उस दिन से उसका नाम जो है पावन सरोवर बना, नंद सरोवर का नाम पावन सरोवर बना। और पावन सरोवर में भगवान अपने गायों को, सब लोग को जल पिलाने के लिए लेके आते थे। उसका एक हिस्सा है जहाँ पर ऐसा स्लोप है, देखो आप, एक हिस्सा जो है सिर्फ सीढ़ियाँ बनी हुई है, एक उस साइड पे एक स्लोप है, वहाँ पर वो गायों को जल चढ़ाते, जल पिलाते थे उनके। और भगवान के साक्ष्य लीला में सबसे उनकी जो फेवरेट जगह है वो कौन सी है पता है आपको? एनीबडी नोस? वो है ग्वाल पोखरा, जो गोवर्धन में है, फेवरेट मोस्ट प्लेस ऑफ साक्ष्य लीला। और नंबर दो की जो फेवरेट जगह है वो पावन सरोवर है भगवान की। और उसी पावन सरोवर के किनारे में यशोदा मैया स्नान करती हैं, और उसी पावन सरोवर के किनारे में यशोदा मैया ने राधा रानी के लिए एक कुआं बनाया, और उस कुएं में मीठा जल के द्वारा राधा रानी बरसाने से आकर कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाया करती थी पावन सरोवर के किनारे पे। और पावन सरोवर पे हमारे चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पर आए हैं। जब वो काम्य वन से यात्रा करते करते आए तो भगवान ने पावन सरोवर में स्नान किया है और वहाँ बैठ के भजन भी किया है। तो चैतन्य महाप्रभु पावन सरोवर में स्नान करने के पश्चात लोगों को पूछते हैं कि बंगला में पूछते हैं, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? तो कहते हैं ये पर्वत जो है ना उसके ऊपर एक गुफा है, उसके अंदर एक बाबा और एक मैया और एक बालक की मूर्ति है, वहीं शायद होंगे। तो पूछते 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 गौरांग महाप्रभु पर्वत पर पहुँचते हैं, और एक बड़ी मोटी गुफा के अंदर एक बुजुर्ग बाबा, एक बुजुर्ग मैया और एक बालक उनकी गोद में बैठे दिखाई पड़ते हैं। तब वो उनसे ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, एक तो उनका कीर्तन, इनका आनंद, विभोर विभोरता से नृत्य करना देखकर तो ब्रजवासी बड़े प्रभावित होते हैं, तो उनके पीछे 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 आते हैं सब लोग। ये अकेले गुफा में घुसते हैं और वो जो बातचीत हो रही है ना सब दूर से देख रहे हैं, और सब लोग अपने आप बातचीत कर रहे हैं कि ये जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, जिस प्रकार से छू रहे हैं कृष्ण को, मैया को, बाबा को, ये स्वयं ही कृष्ण हो सकते हैं, क्योंकि इतना प्रेम, इतना प्रेम से वार्तालाप जो इनकी देह बोली है, इतना प्रेम तो कृष्ण के अलावा किसी का नहीं हो सकता है। तो उन्होंने वहाँ पहचान लिया था उनको कि यही कृष्ण है। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने नंद बाबा, यशोदा मई और कृष्ण भगवान की मूर्ति को वहाँ पर लोगों के सामने प्रकट किया, प्रस्तुत किया। उसके बाद में बलराम जी का मूर्ति वहाँ पर स्थापन किया गया। आज वहाँ पर धनसुखा मनसुखा, मतलब श्रीदामा और मधुमंगल की मूर्ति भी है, और साथ में साइड में राधा रानी की मूर्ति भी विराजमान है, वो सब बाद में रखे हुए हैं। नंद भवन में दर्शन किया आप लोग सब लोगों ने? सारे परिवार का दर्शन है, बोलते ना उधर के गोसाई लोग, राधा रानी ससुराल के भाव में बाजू में खड़ी है, बाबा के पास में बड़ा बालक बलराम जी खड़े हैं, मैया के पास में छोटा बालक कृष्ण भगवान खड़े हैं, ये साइड में दोनों सखा खड़े हैं। और वो कहाँ देख रहे हैं मालूम है आपको? कहाँ देख रहे हो? उधर एक अलमारी है, वो अलमारी में बंटा भोग के लड्डू रखा रहते हैं। वो पुजारी कहते हैं कि कई बार हम लोग मूर्ति को घुमाते हैं फिर भी इन दोनों की नज़र वहीं दिखाई पड़ती है। इस वेरी अद्भुत थिंग। वो मूर्ति को धनसुखा मनसुखा के कैसे भी घुमाओ आप, कहीं भी आप देखो उनको, उनका नज़र वो कबड़ के ऊपर ही रहेगा। उधर एक शालिग्राम शिला है, वो शालिग्राम शिला जब नंद बाबा थे और कृष्ण भगवान थे तभी भी थी वो, और उसका नंद बाबा पूजन करते थे। तो शालिग्राम शिला एक दिन कृष्ण भगवान ने मुंह में डाल दिया, और नंद बाबा ढूंढ रहे हैं, अरे मेरी पूजा का समय हो गया, शालिग्राम शिला कहाँ गई, कहाँ गई, किसने ली, क्या किसने कहाँ रखी, सब जगह पूछा। एंड में सोचा कि चोर तो एक ही है, उसको पूछना चाहिए। तो उसके बाद पूछे गए तो बोलता ही नहीं कुछ। अभी आपके मुंह में इतना बड़ा लड्डू होगा तो कैसे बोलेंगे आप, इसके मुंह में इतनी बड़ी शिला है तो ऐसे ही कर रहा है। बहुत देर बाद बोलने के बाद में फिर उसने निकाल दिया उसको बाहर। तो शालिग्राम भगवान जो है, हाँ भगवान ही है वो स्वयं, लेकिन शालिग्राम के रूप में जो है वो भगवान के मुंह में रहकर इतने परमानंद को प्राप्त किया, वो पिघल गए अंदर। वो पिघलने से भगवान के दांतों का निशान आया उसके ऊपर, और वो शालिग्राम जो शिला है वो आज भी भगवान के दांतों के निशान के साथ में उस मंदिर में है। गोसाई लोगों को पूछेंगे तो आपको दर्शन कराएंगे उसका, भगवान के सुंदर दांतों का निशान है उसके ऊपर, ऐसा अद्भुत दर्शन है वो। तो हमारी कथा कहाँ शुरू हुई थी? पावन सरोवर से, है ना। तो पावन सरोवर में सनातन गोस्वामी ने भजन किया है। जब वो कल बताया ना आपको मैंने, जो कृष्ण दास ब्रह्मचारी को मदन मोहन जी का विग्रह दिया सेवा करने के लिए, तो वो चले गए अपना परिक्रमा करने के लिए और कुछ देर वो पावन सरोवर के अंदर रहे, उधर वहाँ पर उनका भजन कुटी है। और हमारे प्रभुपाद जी के गुरु भाई जो हैं अखिजन कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनका भी भजन कुटी वहाँ पर है। उस किनारे पर चैतन्य महाप्रभु की बैठक भी है, थोड़े बाजू में उसके वल्लभाचार्य की बैठक भी है। ऐसा ये बहुत विशाल और सुंदर कुंड पावन सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। और पावन सरोवर में स्नान करने से कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा भी महात्म्य है उसका। और आपने क्या देखा? मोतीकुंड देखा? मोतीकुंड नहीं देखा आपने? और क्या देखा? उधर पर्वत के पास एक नरसिंह देव का मंदिर है, थोड़ा उतरने के बाद में। जब भी कोई संकट आता था ना, तो नरसिंह भगवान का पूजा नंद बाबा करते थे नीचे जाकर। वो अभी भी वो वराह नरसिंह का मंदिर है नीचे। नीचे एक जगह है, उसका नाम है नंद बैठक। वहाँ गए आप? नंद बैठक बहुत ही अद्भुत जगह है वो। उसका भाव जो है उस जगह का, वो दिव्य भाव है उसका। अभी कैसा है ना, बाल लीला में क्या होता है कि रोज जब उनको भेजते थे ना, तो मैया को रहा जाता नहीं था कि अभी वो जा रहा है, लेकिन अभी जाना तो है उसको। तो फिर वो कुछ देर तक उसको साथ देती थी, फिर आती थी पीछे। फिर दिन भर बार बार लगातार बेसुमार अनेक बार खिड़की में चढ़ना और देखना किधर है। हाँ उधर है, हाँ उधर है, याद आई उधर है, उधर है। हाँ लेकिन दूर है ना बहुत वो। फिर सूरज को दिखती थी, अरे अभी तो इतना ऊपर क्यों है, जल्दी नीचे आ जा, मेरा बलाला लौट के आएगा, है ना। बार बार ये देखना उसको और सूरज को देखना। उसके बाद में जब बड़ी गैया चराने का आरंभ हो गया ना, तो उसके बाद केवल सूरज को देखना, क्योंकि वो तो बड़े गायों को लेने के बाद में दूर दूर वनों में जाने लगे। तभी तो वहाँ से दिखते नहीं थे वो नज़र से ओझल हो गए। तो फिर बार बार खिड़की में जाना और बार बार सूरज को देखना, कितने ऊपर है अभी, कब नीचे आएंगे, कब नीचे आएंगे। कहते थे कि वो दिन भर उनके आँखों से आँसुओं से भरी रहती थी भगवान के विचार से। टीयर्स, आईज फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ लव ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। गायों की आँखों में भी आंसू रहा करते थे, गायों को थन में भी हमेशा दूध प्रेम से टपकते रहता था, ऐसा भाव है नंदगांव का। तो फिर जब एक बार फाइनली सूरज नीचे आता था ना, तो फिर वो उनको रहा नहीं जाता था, अभी वो आते होंगे। फिर कुछ देर बाद बंसी भी सुनाई पड़ती है कि अभी दूर आ रहे हैं, पहुँच ही गए होंगे। तो अभी उनको इतना पेशेंस नहीं है कि वो ऊपर तक चढ़ के आएगा महल तक और हम वहाँ उनका स्वागत करेंगे। तो वो सब आरती वारती का सामान लेके, मक्खन मछली सब लेके नीचे उतर रहते थे। उनको उतना धीरे नहीं है कि भाई वो आ गया और हम लोग भी उधर ऊपर क्यों है, तो नीचे आ जाते थे और नंद बैठक नाम की जगह पर जाके बैठ जाते थे ग्राउंड लेवल पे। और वहाँ पर फिर तैर कदम पे बंसी बजाकर सारे गायों को बुलाकर उनको साथ लेकर गीत बजाते हुए गाते हुए वो सब लोग नंद बैठक में दोनों भैया जो है बाबा के गोद में कूदते थे। आपने देखा वहाँ फोटो? देखा इतना सुंदर फोटो है वो, इतना सुंदर फोटो है। बड़े बुजुर्ग बाबा बैठे हैं उधर, एक बार एक जगह पर कृष्ण भगवान बैठे हैं और एक जगह पर बलराम जी बैठे हैं। उनका पैर देखा अपने? पैर कृष्ण का एक पैर और कृष्ण बलराम जी का ऐसा पैर, दोनों क्रॉस करके बैठे हुए, प्रेम का प्रतीक है वो। हाँ, एक नीला पैर और एक सफ़ेद पैर ऐसे क्रॉस करके बैठे हुए हैं। और वो बता रहे हैं बाबा ऐसे हुआ, तो बाबा इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इसका सुनो कि उसका सुनो, दोनों आज का स्टोरी बता रहे हैं, बीच में बाल बाल भी बोल रहे हैं अपना अपना। तो इतना आनंद का सीन है वो, सभी आज क्या हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं और वो मैया बाबा दोनों सुन रहे हैं। बहुत देर तक वही सुनते हैं, चुम्मा लेते हैं उनका और फिर बहुत देर तक वो पेट भर के बता दिया, फिर उनको लेकर ऊपर चलते वो नंद बैठक। आतुरता भगवान के लिए उसका प्रतीक है वो, ईगरनेस टू रिसीव द लॉर्ड, टू सर्व हिम, टू प्लीज हिम, शावर हिम विथ लव एंड अफेक्शन, वो उस जगह का भाव है। और वो जो चेहरा है ना नंद बाबा का फोटो का, इतना उसके अंदर भाव वात्सल्य का है, देखते रह जाएंगे उसको। और वो केवल चित्रपट की वहाँ पर पूजा होती है नंद बैठक पे। उसके बाजू में यशोदा कुंड है, यशोदा कुंड सेपरेट जगह है जहाँ पर बालक कृष्ण बलराम को रोहिणी मैया और यशोदा मैया स्नान करा देती, यशोदा कुंड बहुत सुंदर जगह है वो भी। उसके बाजू में नंद बाबा की खिरक है यानी कि गौशाला है, नंद बाबा के गायों की सेवा की करते थे। और आगे कहाँ गए आप? उद्धव क्यारी गए क्या आप? उद्धव क्यारी नहीं गए, कोई बात नहीं। इस तरह से नंदगांव की अनंत लीला है। नंदगांव का एक सार है कि नंदगांव में बाल ग्वाल बाल इतने नटखट होते हैं, कोई साधु पुरुष वहाँ टिक पाया ना तो कहते हैं कि यहाँ पर टिक पाया तो सच्चा साधु है वो, क्योंकि ग्वाल बाल जो है वहाँ के आज के भी इतना छेड़ते, इतना परेशान करते उनको कि वो साधु भाग जाते हैं वहाँ से। उसमें भी कोई टिक जाता है तो वो कहते हैं कृष्ण बलराम की परीक्षा से आप पास हो गए, सच्चा साधु है वो जो नंदगांव में टिक पाया, ऐसा है। आज ललिता देवी का कितना बजे अभी? ओके, ललिता देवी का आज आविर्भाव दिवस है ना। ललिता देवी का आविर्भाव दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। मैंने ऐसा प्रार्थना किया था आप लोगों को कि आप जरा जाते हुए आते हुए यशोदा उच्चा गांव जाके आओ, लेकिन कहते आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे कल भी थी और परसों भी थी और आज भी थी, बहुत ज़्यादा उष्णता थी तो आप लोग पहुँच नहीं पाए वहाँ पर। तो वो ललिता देवी जो है वो राधा रानी की प्रथम सखी है, सबसे प्रिय सखी है, और वो उसका गांव है उच्च ग्राम, ऊँचा गांव जो बरसाने से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, पर वहाँ पर भी पर्वत है, उसका नाम है अशोक पर्वत, आज की भाषा में उसको अटोर पर्वत कहते हैं। और वहाँ पर अशोक महागोप रहा करते थे और उनकी पत्नी शारदा देवी वहाँ पर रहा करती थी। तो दोनों को भगवान की कृपा से ललिता देवी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई, तो वो उनका स्थान है जहाँ पर ललिता देवी का जन्मस्थान भी है और निवास स्थान भी है। वहाँ पर उस गांव में एक सखी गिरी है, सखी गिरी, सखी यानी ललिता सखी का पर्वत है वो, उसमें अनंत लीलाओं का स्थली है। कुछ कुछ बता देता हूँ आपको, वहाँ पर एक फिसलन पहाड़ी है, वहाँ पर राधा कृष्ण जो है मेहंदी लगाकर उस शिला से फिसलते थे, और जब शिला से फिसल कर लास्ट में रुकते थे एक पत्थर के यहाँ पर, तो मेहंदी लगे हुए पैरों का स्पर्श होने के पश्चात पत्थर पिघलते थे और मेहंदी लगे हुए पत्थर के पैर का निशान उस शिला में बना हुआ है, उसको कहते हैं मेहंदी शिला। एक फिसलन शिला, उसके पास मेहंदी शिला, उसके बाद है दूध कटोरा, वहाँ पर पत्थर में दूध कटोरा बने हुए हैं, 56 कटोरा बने थे पहले, अभी कम हो गए। उसमें सखी कृष्ण भगवान को राधा रानी को छाछ पिलाती थी। उधर एक झूला स्थली है उस पर्वत के ऊपर, वहाँ पर अभी अभी तो अष्टमी आएगी ना, त्रयोदशी के दिन ललिता जी का बड़े प्रेम से राधा रानी कृष्ण से विवाह करती है, अपने हाथों से करती है विवाह, उसको ब्याहुला कहते हैं। तो त्रयोदशी के दिन राधा रानी ने इस महीने के ही श्रावण वद्य भाद्रपद के शुद्ध त्रयोदशी के दिन राधा रानी ने यशोदा ललिता जी का कृष्ण के साथ विवाह किया है, फिर झूले में बिठाकर दोनों को झुलाया है राधा रानी ने स्वयं, वो भी वहाँ स्थली है। और एक स्थली है वहाँ पर, वो भी मेहंदी शिलाई है, लेकिन जब रूट कर राधा रानी वहाँ बैठती थी तो हाथ में मेहंदी लगी होती ना, तो वो जैसे घिस घिस कर उसको निकालती थी, तो वो अति उत्कट भावना की वजह से पत्थर भी पिघलते थे, तो उधर भी मेहंदी के निशान है। उस पर्वत पर कई जगह पर मेहंदी की शिलाएँ हैं, मेहंदी शिलाएँ हैं। और उस गाँव के अंदर एक त्रिवेणी कूप है, वो त्रिवेणी कूप का लीला ऐसा है कि वहाँ पर नारद मुनि के अवतार नारायण भट्ट गोस्वामी का भी जन्म वहीं पर हुआ, वही उसी उच्च ग्राम के। वो तो बड़े सिद्ध संत थे वो, उन्होंने ब्रज में रास लीला महोत्सव का संस्कृति दोबारा आरंभ किया और ब्रज के कई स्थान उन्होंने प्रकट किए, यहाँ तक कि बरसाने की लाडली लाल जी का विग्रह जो है ये उन्होंने प्रकट किए, जो बज्रनाभ ने बनवाए थे और बज्रनाभ ने कृष्ण भगवान के अंतर्दान होने के बाद में स्थापन कराए थे, वो कुछ समय बाद लुप्त हो गए, वो नारायण भट्ट गोस्वामी ने उसी ब्रह्माचल पर्वत से दोबारा प्रकट किए, वही नारायण भट्ट गोस्वामी का निवास था उधर, उनकी समाधि भी वही है। तो उन लोगों को, उन सब ऊंचा गाँव के ब्रजवासियों ने एक बार नारायण भट्ट जी से कहा, महाराज जी हमें सबको त्रिवेणी में स्नान करने की बड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन त्रिवेणी तो बहुत दूर है, हम तो जा नहीं पाएंगे वहाँ पर, आप हमें कृपा करके त्रिवेणी का दर्शन यहीं करा दीजिए। तो नारायण भट्ट ने अपने दिव्य भक्ति की शक्ति के आधार पर गंगा जमुना नदी, तीनों नदी को प्रकट किया, गंगा जमुना सरस्वती, सबकी आंखों के सामने तीन नदियां प्रकट हो गई और अचानक एक जगह पर एकत्र हो गई और वो एकत्र होकर एक कुएं में चली गई, यानी कि त्रिवेणी कूप, वो कुएं में वो तीनों नदियां चली गई। आज भी सोमवती अमावस्या के दिन वो कुएं को बाढ़ आती है और वो भर भर के पानी सब खेत में बहता है, तो उस दिन सारा ब्रज वहाँ लौटता है, पहुँचता है स्नान करने के लिए, और त्रिवेणी वहाँ पर धाम प्रकट हो गया है। त्रिवेणी धाम जो है जैसे प्रयागराज जहाँ पर है ना, प्रयागराज वहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए, तो स्वयं प्रयागराज जो है वो तीर्थ वहाँ प्रकट हो गया है उन जगहों में। और वहाँ पर आज भी सब लोग त्रिवेणी स्नान करने के लिए आते हैं, और साक्षात त्रिवेणी में स्नान करने से भी कई गुना ज़्यादा लाभ इस त्रिवेणी में स्नान करने से लोगों को प्राप्त होता है, और साथ साथ प्रेमा भक्ति भी प्राप्त होती है। तो वो एक खेत में है त्रिवेणी को। और एक विशिष्ट बात ऊंचे गांव में वो है कि विशिष्ट गांव ये है कि वहाँ पर बलराम जी का और रेवती जी का मंदिर है। उसका कहानी ऐसा है कि ललिता जी और रेवती जी की बड़ी अच्छी मैत्री थी। तो जब रेवती जी का कृष्ण भगवान के साथ बलराम जी के साथ विवाह हुआ, तो अपने नए नए ब्याहे हुए पति को लेकर अपनी सखी को मिलने के लिए रेवती जी बलराम जी को लेकर ऊंचे गांव आई थी। तो ललिता जी ने बड़ा उनका सुंदर आतिथ्य किया था, और उन बहुत दिन वहाँ पर रुके थे वो। तो वहीं पर बलराम जी का मंदिर बनाया गया है, और बलराम जी का विग्रह जो था वो स्वयं प्रकट था, वो लुप्त हो गया था। तो नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने उसी मंदिर के पीछे हींस की झाड़ी है वहीं पर उस विग्रह को दोबारा प्रकट करके वापस पुनर्स्थापित किया था। तो ललिता देवी का महात्म्य क्या है? ललिता देवी भगवान कृष्ण की, राधा रानी की बड़ी पट्ट सखी है, मतलब बहुत प्रेम उन पर है। और उनकी सेवा क्या है, वो मोर पंख का ड्रेस पहनती है। उनका रंग जो है ना वो गोरोचंद वर्ण है उनका। एक गौमूत्र से एक पदार्थ बनाते हैं गोरोचंद, जो भगवान की सेवा में, भगवान की स्थापना में, प्रतिष्ठापना में काम आता है उसका। तो गोरोचंद का जो वर्ण होता है ना वो पीला हिरा गनो ग्रीनिश येलो रंग होता है, वैसे उसका शरीर का रंग है। और सारंग उसका प्रिय राग है, और तांबूल बनाना उसकी बड़ी प्रधान सेवा है उसकी, भगवान का तांबूल बनाना। लेकिन तांबूल बनाना केवल सेवा नहीं है उसकी, और एक प्रधान सेवा है, पुष्प के द्वारा जो भी होता है वो सब बनाने में वो एक्सपर्ट है। यानी कि पुष्प वितान यानी कि कमान, पुष्प की पुष्प मंडल, पुष्प शैया यानी कि फूलों की शैया, पुष्पमाला, पुष्प कुंडल, हाँ पुष्प के जितने भी अलंकार बनते हैं वो सारे, पुष्प के जो भी कुछ बनता है वो सब कुछ बनाने में ललिता जी बहुत प्रधान है। और उनके अंदर, उनके सेवा में तीन प्रधान मंजरियाँ रहती हैं। उसके अंदर प्रधान कौन है? रूप मंजरी, रूप मंजरी और लवंग मंजरी और एक मंजरी, तीन मंजरी जो है, शायद गुण मंजरी, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट रूप मंजरी उनकी प्रधान सखी है। और उनके अंदर जो तीन प्रधान मंजरियाँ होती हैं उनके हर एक के अंदर एक एक करोड़ सखियाँ सेवा करती हैं। तो एक अष्ट सखी के, हर एक सखी के पास में 3 कोटि गोपियों का जूत रहता है, उसको जूत कहते हैं, जूत। इसलिए रूपमंजरी रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए, और हम सब लोग रूप गोस्वामी के अनुयायी, हमारा नाम रूपानुग रूप से हम जानते हैं। इसलिए ललिता सखी जो है वो हमारी अधिष्ठात्री देवी है। राधा रानी के प्रतिनिधि के रूप में वो जा जाकर लोगों को ढूंढती है, जिन जिन के हृदय में थोड़ा बहुत प्रेम भक्ति का अंश भी होगा, थोड़ी बहुत इंक्लिनेशन भी होगा, प्रोक्लिविटी भी होगी, उसको वो पकड़ती है और अपने शरण में लेके उसको तैयार करती है, अच्छी तरह से रेडी करती है, और फिर राधा रानी को अर्पण करती है। उसका और एक प्रमाण भी चैतन्य चरितामृत में है। जब गौरांग महाप्रभु गुंडीचा मार्जन कर रहे थे, तब कुछ भक्तों ने, बंगाली भक्तों ने उनके चरणों में पानी फेंका। तो जैसे ही पानी फेंक आया तुरंत पिया उसको। तो एक बार किया तो महाप्रभु ने थोड़ा सा अप्रसन्नता दिखाई कि आई एम नॉट हैप्पी विद इट। तो उन्होंने 2 बार और एक हिम्मत से और एक बार पानी डाला और एक बार पिया और 3 बार डाला, तब उन्होंने बाहर से क्रोध प्रकट किया, रुक जाओ, ये बंगाली भक्तों को कोई शिष्टाचार नहीं आता है, हे स्वरूप आ जाओ यहाँ पर, ये बंगाली लोगों को जरा अपने पनाह ले लो और थोड़ा ट्रेनिंग दे दो, ट्रेन देम नाइसली हाउ टू बिहेव। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि उस दिन महाप्रभु गौरांग ने सारे गौड़ीय वैष्णवों को स्वरूप दामोदर जी, जो ललिता जी के अवतार है, उनके सुपुर्द कर दिया। और आज भी वो हमारे, उनके सुपुर्द हैं, उनके ट्रेनिंग में, छत्र छाया में, कृपा छत्र में विराजमान है। तो हमारा संप्रदाय जो है वो ललिता जी की छत्र छाया में है। और ललिता जी सब गोपियों की नेता है वो, और उसके बाद विशाखा जी उनकी दूसरी नंबर की गोपी हैं। सारी गोपियाँ ललिता जी के आदेश में काम करती है। और ललिता जी तेज है स्वभाव से, हाँ राधा रानी बहुत मृदुल है, बहुत कोमल है, बहुत कृष्ण आतंक करते तो डर जाती है बेचारी उस समय, ललिता जी कम्स इन फ्रंट और भगवान से लड़ती है, वो भगवान को डिफीट कर देती है। जब भी राधा रानी पर आतंक होता है कृष्ण का, तो ललिता जी उनकी सहायता करती है, तो इसलिए वो उन गुरु भी हैं उनकी, उनकी बड़ी बहन भी है वो। वैसे बहन तो है ही, क्योंकि ये जो भाई थे ना, ये सभी जो आठ भानु थे, नौ भानु थे एक्चुअली, वृष भानु बीच में, चार भानु ऊपर चार नीचे, चार भाई बड़े चार भाई छोटे, वो सबको एक एक कन्या हुई, वो भगवान की अष्ट सखियाँ हैं। और राधा रानी वृष भानु महाराज की कन्या है, बाकी आठ कन्याएं अष्ट सखियाँ हैं। तो उसमें से प्रधान जो है वो बड़ी उम्र की जो है वो ललिता देवी है, और ललिता देवी के शरण में, शरण मतलब उनके प्रेम छत्र छाया में राधा रानी हमेशा रहती है, और हर प्रकार से हर लीला का नियोजन वृंदा देवी के द्वारा ललिता देवी करती है। वृंदा देवी इज़ द चीफ ऑर्गेनाइजर, लेकिन वो आइडियाज़ जो है ना, कंसेप्ट्स, वो ललिता देवी से लेती हैं, उनके कंसेप्ट्स के अनुसार विस्तार करके वृंदा देवी उसको मैनेज करती है। लेकिन सारी सलाह मशवरा जो भी होता है ना, वो ललिता देवी से होता है। जब भी कोई भगवान के द्वारा कुछ कष्ट होता है तो ललिता देवी के वकालत में जाना पड़ता है उनको, ललिता देवी दंड देती है फिर कृष्ण भगवान को। जैसे कि वो होली में कभी गुस्ताखी कर देते हैं तो उसको पकड़ कर गोपियाँ लाती है ललिता देवी की वकालत अदालत में, फिर वो तय करती है क्या दंड देना है, क्या सब मुंह पे काजल लगाना है, कि मुक्का मारना है उसको, कि हाथ पांव मोड़ के पीछे पीछे उसको दंड देना है, क्या उसके कपड़े पर कुछ गाली लिखनी है, क्या करना है, गाली देनी है नहीं देनी है, तो सारा चीज़ जो है ललिता देवी तय करती है। तो ललिता देवी बहुत विशेष सखी है भगवान की, बड़ी दयालु हैं वो, और जिनके भी हृदय में कोई कणु मात्र भी भगवान के लिए इच्छा है उन सब लोगों को आश्रय देती है, सब लोगों को ट्रेनिंग देती है और भगवान के योग्य बनाकर भगवान को अर्पण कर देती है। तो आज उस ललिता देवी का बहुत लीला है उनकी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीला है ललिता देवी की, लेकिन समय के अभाव से हम नहीं कह पाएंगे। इतना ही सोचना और विचार करना पर्याप्त है कि ललिता देवी जैसे राधा रानी बड़ी कृपालु है, उनकी कृपा के बिना कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ललिता देवी की सिफारिश से राधा रानी किसी को भी स्वीकार कर लेती है, और हम सब लोग बाय डिफॉल्ट हमारे संप्रदाय के अनुसार उनके शरण में हैं, उनकी कृपा याचना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं, हम भी उनकी सेवा में रहकर भगवान की लीला में, भगवान की सेवा में रहने का इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। श्री ललिता देवी की, श्री राधा रानी की, श्री उच्चग्राम की, श्री नंदग्राम की, निताई गौर प्रेमानंदे।